अध्याय दो वर्ण आश्रम व्यवस्था भूमिका। भारत के प्राचीन आर्यों ने वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम धर्म इस दो सबल व सुदृढ़ स्तंभों पर अपने उस विशाल का भव्य सामाजिक भवन का निर्माण किया था जो कि केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक आकर्षक वस्तु बन गया था। इसी भवन के निवासियों ने उस संस्कृति व सभ्यता को जन्म दिया जिसकी ज्योति जगत को ज्योतिर्मय करने में सदा सफल हुई। वर्ण आश्रम का अर्थ। वर्ण आश्रम हिंदू सामाजिक जीवन की दो अवस्थाओं का नाम है। प्रथम है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। इस दृष्टिकोण से वर्ण आश्रम का अर्थ है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों के लिए निर्धारित आश्रम की व्यवस्था, अपने वर्ण के नियमों का पालन करना तथा अपने जीवन को निर्धारित आश्रमों के बीच से गुजारते हुए जीवन के अंतिम परम व चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सतत प्रयत्नशील बना रहना प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य समझा जाता था। इसलिए वर्ण आश्रम को वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं। एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की व्याख्या उसके गुण के संदर्भ से ही हो सकती है और यह गुण उसके प्रशिक्षण तथा प्राकृतिक विकास पर आश्रित होता है। यहाँ आश्रम व्यवस्था का आधार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को चार भागों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में बांट कर व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण व प्राकृतिक विकास के अवसरों को उपलब्ध किया गया है। इस व्यवस्था में व्यक्ति का कल्याण अंतर्निहित है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से क्रियाशील करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रम का विभाजन भी उचित रूप से हो। उचित रूप में श्रम विभाजन व्यक्ति के प्रकृतिक स्वभाव गुण और प्रवृत्ति के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव गुण व प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के समूहों में बांट देना ही उचित समझा गया। एक एक समूह को एक एक वर्ण माना गया और प्रत्येक के सदस्यों के आचार व्यवहार या सामाजिक कार्य व कर्तव्यों का एक निश्चित मानदंड निर्धारित कर दिया गया, यही वर्ण व्यवस्था है। पीएन प्रभु के अनुसार आश्रम और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जीवन और उससे संबंधित व्यवहारों का आधार लिया गया है। जीवन के कुछ मौलिक विचारों और सिद्धांतों पर ही दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। वर्ण आश्रम का उद्देश्य। वर्ण आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति तथा समूह को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उपलब्ध करना है। इस व्यवस्था में अर्थ धर्म अर्थ तथा मोक्ष के मधुर फलों का उपयोग तथा आस्वादन सर्वथा सुलभ हो जाता है। व्यक्ति के कल्याण को सामाजिक कल्याण से पृथक नहीं किया जा सकता। समाज कल्याण तभी संभव है जबकि उस समाज के इकाई व्यक्ति में वह गुण सामर्थ्य व शक्तियाँ हो जिनकी सहायता से उसके लिए यह संभव हो कि वह सामाजिक हित के कार्यों को सुचारू ढंग से कर सके। व्यक्ति में इन्हीं गुण सामर्थ्य व शक्तियों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया था। इस अर्थ में आश्रम का उद्देश्य तथा महत्व वैयक्तिक है। इसके विपरीत वर्ण धर्म का उद्देश्य सामाजिक हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वभाव गुण तथा प्रवृत्ति के अनुसार एक निश्चित सामाजिक कर्तव्य का पालन करता हुआ आत्म विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। इस रूप में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार सामाजिक कार्यों में बांट देना था जिससे कि समाज के कार्य ठीक ढंग से रहे और एक के कार्यों पर दूसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो सके। इससे समाज में असंतोष व अव्यवस्था की मात्रा न्यूनतम रहने की संभावना अधिक हो सकती है। निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वर्ण आश्रम का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित रूप में इस प्रकार बनाए रखना है कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के ही जीवन में धर्म अर्थ काम व मोक्ष का संतुलन समन्वय संभव हो जिससे कि न केवल आत्महित अपितु सामूहिक हित की भी सिद्धि हो सके। अतः वर्ण आश्रम व्यवस्था वह सामाजिक आयोजन है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक कर्तव्यों तथा अधिकारों का निर्धारण तथा निरूपण किया जाता है जिससे कि दोनों का कल्याण संभव हो। यह व्यक्तिगत हित की ही नहीं सामूहिक हित की भी एक व्यवस्था है। यह एक के लिए और सबके लिए है। वर्ण व्यवस्था। अर्थ एवं उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत। हिंदू सामाजिक व्यवस्था की विवेचना वास्तव में तब तक संभव नहीं है जब तक कि वर्ण व्यवस्था की वास्तविक प्रकृति को ना समझ लिया जाए। वर्ण सामाजिक विभाजन की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के सदस्यों के लिए कुछ सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्धारण समाज के द्वारा ही किया जाता है। इन्हीं कर्तव्यों को वर्ण धर्म कहा गया है। यहाँ हम सर्वप्रथम वर्ण के अर्थ तथा उत्पत्ति के विषय में विवेचना करेंगे और फिर अपने प्रश्न में हिंदू समाज में विभिन्न वर्णों के लिए धर्म का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्ण व्यवस्था वैदिक सभ्यता का ही एक प्रतीक है और हिंदू जीवन का एक आवश्यक अंग। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह व्यवस्था वैदिक काल से परंपरागत रूप से हस्तांतरित होती आई है और अनेक समाजशास्त्रियों का विचार है कि इसी वर्ण व्यवस्था से ही वर्तमान समय में भी प्रचलित जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहिए कि जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का ही परिवर्तित रूप है। यह विचार ठीक है या नहीं, इस समस्या का समाधान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। समस्या तो केवल वर्ण व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम वर्ण के अर्थ को पहले समझ लें। वर्ण व्यवस्था का अर्थ। डॉक्टर शर्मा के अनुसार वर्ण शब्द का प्रयोग प्रायः रंग के अर्थ में ही किया जाता है, परंतु वर्ण शब्द का वास्तविक अर्थ रंग नहीं है। इसके शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हमें इस शब्द की व्युत्पत्ति मालूम करनी चाहिए। यह शब्द निम्नलिखित तीन धातुओं में से किसी एक से बनाया जा सकता है। विंच वर्णे, वर्णने तथा वर्ण प्रेरणे। पहली धातु के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ वर्णे या चुनने के अर्थ को बतलाता है, जिसमें हम पेशों या कार्यों के चुनने को ले सकते हैं। दूसरी धातु के अनुसार वर्ण शब्द वर्णन करने के अर्थ को बतलाता है, जिससे हम पेशों, गुणों, सामाजिक परिस्थितियों या कर्तव्यों के वर्णन को ले सकते हैं। तीसरी धातु के अनुसार वर्ण शब्द प्रेरित करने के भाव को व्यक्त करता है, जिससे हम यह मान सकते हैं कि एक वर्ण व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्यों को करने और कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर शर्मा ने आगे और भी लिखा है कि वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों और इनके धर्मों और गुणों के वर्णन के अर्थ में ही किया गया मालूम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज को चार हिस्सों में बांधने की प्रणाली को ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल के लोगों के लिए यह संभव ना था कि वे शारीरिक लक्षणों को ठीक से माप सके। इसलिए यह आशा नहीं की जा सकती कि वर्ण का अर्थ रंग या प्रजाति भिन्नता हो सकता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ण शब्द मुख्य रूप से कर्मों और गुणों का वर्णन करने, उनको स्वीकार करने या एक वर्ण को स्वीकार करने के बाद उसके गुणों और कर्मों को निभाने की प्रेरणा देने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। श्री यास्काचार्य ने निरुक्त में वर्ण शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्ण अथवा चुनाव करने का अर्थ देने वाले बी कोष्टक में वित्तीय विरे धातु से हुआ है, अर्थात वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर 1/73/7, 2/3/5, 9/97, 15 वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है। सांख्य दर्शन के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसलिए पुराणों में भी कई जगह शुक्ल ब्राह्मण रक्त क्षत्रिय वैश्य और कृष्ण शूद्र कहलाए शूद्र लिखा मिलता है। काने के अनुसार वर्ण शब्द का प्रयोग और वर्ण आर्य तथा कृष्ण वर्ण दासों के लिए होता है। बाद में इसका प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों सामाजिक वर्गों के लिए किया जाता है। वर्ण का अर्थ। साधारणतः लोग जाति और वर्ण दोनों को ही एक ही मानते हैं तथा एक ही अर्थ में उनका प्रयोग भी करते हैं। वस्तुतः इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ तथा इनकी अलग अलग धारणाएं हैं। एक ही अर्थ में इनका प्रयोग गलत है। विद्वानों ने इसके दो अर्थों में प्रयोग किया है। डॉक्टर घुरिये, सेनार्ड तथा हंटन जैसे मानव शास्त्री और प्रजातीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले विद्वानों ने वर्ण शब्द को रंग के अर्थ में लिया है। उनके अनुसार आर्यों तथा भारत के मूल निवासियों के रंगों में भेद के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य लोग श्वेत वर्ण तथा मूल निवासी श्याम वर्ण, आर्य लोग श्वेत वर्ण तथा मूल निवासी श्याम वर्ण के माने जाते थे। डॉक्टर घुरिया के अनुसार आर्यों और दासों के भेदक तत्व के रूप में रंग के अर्थ में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। हंटन का मत है कि सफेद, लाल, पीले और काले चार रंग के आधार पर हिंदू समाज चार वर्णों में बांट दिया गया। सफेद रंग के व्यक्ति ब्राह्मण, काल रंग के क्षत्रिय, लाल रंग के क्षत्रिय, पीले रंग के वैश्य तथा काले रंग के व्यक्ति शूद्र कहे गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति में जो विद्वान प्रजाति दृष्टिकोण से विचार करते हैं उनके अनुसार वर्ण का अर्थ रंग हुआ। साहित्यिक दृष्टि से वर्ण का अर्थ वर्ण करना अथवा चुनना है। यह शब्द पेशे के चयन की तरफ संकेत है। रविन्द्रनाथ मुखर्जी के अनुसार हो सकता है कि यह चुनाव पेशे की चुनाव की ओर इशारा करता है, और इस रूप में वर्ण का अर्थ उस समूह से था जो एक विशेष प्रकार के पेशे को अपनाता था या समाज द्वारा निर्धारित कुछ कार्यों को करता था। पुराणों तथा सांख्य दर्शन में भी वर्ण को रंग के ही अर्थ में लिया गया है। पुराणों में कई स्थानों पर शुक्लवर ब्राह्मण, रक्तवर क्षत्रिय, पीतवर वैश्य और कृष्णवर शूद्र का उल्लेख मिलता है। वर्ण के उत्पत्ति संबंधी विचार। वर्णों के उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो एक दूसरे से भिन्न है। नंबर एक, ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रश्न हैं। उसके पुरुष सूक्त में एक मंत्र में वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। वह मंत्र इस प्रकार है, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीत् बाहु राज्यान्यः कृतः पुरु तदस्य यदस्य पदाभ्याम सूत्रो आजयात। उनके अनुसार परम पुरुष अथवा ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करने तथा देने, क्षत्रिय को सुरक्षा, वैश्य को वाणिज्य तथा शूद्र को सेवा का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार समाज में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। महाभारत में भी वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद के ही सिद्धांत की पुष्टि की गई है। उसमें एक स्थान पर कहा गया है, उस पुरुष को हमारा प्रणाम जो ब्राह्मणों को मुख में, क्षत्रियों को बाहुओं में, वैश्यों को उरों में और शूद्रों को पांव में रखता है। महाभारत के शांति पर्व में एवं अन्यत्र इस सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया है। नंबर दो, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ब्रह्मा से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, परंतु उसमें ऋग्वैदिक की यह मान्यता नहीं स्वीकार की गई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, जंगे से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उसके अनुसार ब्रह्मा ने सबसे पहले देवताओं में चार वर्ण बनाए और उसी आधार पर पृथ्वी पर वर्ण व्यवस्था की रचना की गई। उनके अनुसार प्रारंभ में केवल ब्रह्मा कोष्टक में ब्राह्मण थे, अकेले कोई भी वह कर्म करने में वह समर्थ नहीं थे। अतः अपनी सहायता के लिए इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान जैसे क्षत्रिय देवताओं की सृष्टि हुई। इतने से भी जब नहीं चला तो उन्होंने वसु, आदित्य, मारुत जैसे वैश्य देवताओं की सृष्टि की। इनके बाद ही जब वह पूर्ण विकास करने में विफल रहे तो कुषाण के रूप में शूद्र देवता की सृष्टि हुई। इसी आधार पर भी वर्णों की उत्पत्ति हुई। नंबर तीन, भृग संहिता के अनुसार। भृग और भारद्वाज के बीच वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में जो संवाद हुआ है उससे एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। भृगी ऋषि भारद्वाज के एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों की रचना की थी, परंतु ब्राह्मण धर्म का ठीक से ना करने वालों के कारण यह वर्ण चार भागों में बट गया। भोग विलास में लिप्त, क्रोधी, साहसी और रजोगुण से ओतप्रोत स्वभाव वाले द्विज क्षत्रिय धन के प्रति उदास, कृषि और पशुपालन को जीवित रूप में अपनाने वाले वैश्य तथा शील एवं सदाचार का प्रत्याग कर हिंसा, असत्य और लोभ के मार्ग को अपनाने वाले शूद्र कहलाए। रजतम गुणों के कारण क्षत्रिय का रंग लाल, कृषि एवं पशुपालन में रुचि के कारण वैश्य का पीला तथा तम प्रधान गुण के कारण शूद्र का रंग काला हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण को छोड़कर शेष वर्णों की उत्पत्ति कर्म पर आधारित है। मनुस्मृति के अनुसार, 54 मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। उनके अनुसार सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र को जन्म दिया तथा इनके लिए अलग अलग कर्म बनाए। प्रथम 3 वर्ण द्विज है। नंबर 5 पराशर के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में राजा जनक ने पराशर मुनि से पूछा कि जबकि समस्त जाति ब्रह्मा से पैदा हुई तब यह आशा की जाती है कि एक ही पिता से पैदा होने के कारण सभी में समान गुण होने चाहिए, तब उसे विभिन्न वर्णों में विभक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ी तथा उनमें गुणों का भेद क्यों उत्पन्न हुआ। इस शंका का समाधान करते हुए पराशर मुनि ने कहा है कि यह सही है कि संतति जिस पिता से उत्पन्न होती है उससे भिन्न नहीं होती, परंतु यदि जमीन और बीज निम्न कोटि का हुआ तो पैदा होने वाली संतति निम्न कोटि की होगी। यह ठीक है कि समस्त मानव जाति की ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है, परंतु सबकी एक ही अंग से उत्पत्ति नहीं है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त धर्म ग्रंथों में से अधिकतर में केवल वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख है। प्रश्न उठता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू समाज में विभिन्न वर्णों के लिए निर्धारित धर्म उन वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने के पश्चात यह सवाल उठता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू शास्त्रकारों और धर्म ग्रंथों ने प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग धर्मों कोष्ठों में कर्तव्यों और सामाजिक कार्यों का निर्धारण किया है। इन्हें वर्ण धर्म कहा जाता है। इन वर्ण धर्मों के आधार पर हिंदू सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। अलग अलग धर्मों के अतिरिक्त चारों वर्णों के लिए कुछ सामान्य धर्मों कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है, जैसे जीवित प्राणियों को हानि न पहुँचाना, सत्य की खोज करना, किसी दूसरे की वस्तु को अनाधिकार पूर्वक न लेना, चरित्र की पवित्रता तथा इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना। मनुस्मृति में प्रत्येक वर्ण के धर्म की विशद व्याख्या की गई है। वर्ण धर्म इस प्रकार है। नंबर 1 ब्राह्मण धर्म। मनु ने वर्ण धर्मों की विशद व्याख्या करते हुए ब्राह्मण धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने ब्राह्मणों को द्विजों में श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसकी वृत्ति सात्विक और उसका स्वभाव निश्चल होता है। ब्राह्मण धर्म के विषय में मनुस्मृति ने लिखा है कि ब्राह्मण का तिरस्कार को विष समझकर उससे सदा डरना तथा आदर को अमृत समझकर उसके लिए सदैव कामना करना चाहिए। उसे सदैव वेदाभ्यास और ज्ञानार्जन करना चाहिए। यही उसका तप है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान देना और लेना ब्राह्मण का कर्तव्य है, परंतु उसे भरसक यही प्रयास करना चाहिए कि दान ना लेना पड़े, क्योंकि इससे ब्राह्मण तेज समाप्त हो जाता है। क्षत्रिय के कर्तव्य में उन्होंने लिखा है कि प्रजा की रक्षा, युद्ध करना, दान देना तथा यज्ञ करना उसके प्रमुख कर्तव्य है। गाय, बैल तथा अन्य पशुओं की रक्षा, दान देना, व्यापार करना, खेती करना तथा ब्याज पर रुपया लेना वैश्य का कर्तव्य है। मनु के अनुसार बिना इच्छा के सेवा सथूसा करना शूद्र का कर्तव्य है। भीष्म ने पढ़ना, आत्मनियंत्रण तथा तप के अभ्यास को ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य बताया है। अध्ययन लोगों की रक्षा तथा यज्ञ करना क्षत्रियों के मुख्य धर्म है। अध्ययन और यज्ञ संपादन के साथ साथ उचित साधनों से धन उपार्जित करना वैश्य का कर्तव्य है। तीनों वर्णों के लिए सेवक के रूप में कार्य करना शूद्र का कर्तव्य है। उन्होंने शूद्रों के धन संग्रह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इससे वह तीनों वर्णों को अपना सेवक बनाने का प्रयास करेगा, यह उसके लिए पाप सिद्ध होगा। भीष्म ने सभी वर्णों द्वारा पवित्र हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ यज्ञों को पूरा करने पर बल दिया है। मोटे तौर पर हम चार वर्णों के धर्मों को निम्नलिखित रूप में बांट सकते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण के गुण व कर्म। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के सिर पर आसीन था, शीर्ष पर आसीन था। यह वर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। इसी से सभी वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके कर्मों का वर्णन प्राचीन हिंदू शास्त्रों में विस्तार से प्राप्त होता है। मनुस्मृति में ब्राह्मण के कर्मों का निर्धारण करते हुए कहा गया है कि अध्यापना, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दान प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणानाम कल्पयत् यो अधित्य दिवजो वेद मन्य कुरते श्रमन सजीवमेव वा शूद्र त्वामाशु गच्छति सात्वमम स्वात्वम। अर्थात पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना देना, यही ब्राह्मण के मुख्य कर्म माने गए हैं। ब्राह्मण को वेद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन नहीं करता वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। वर्णों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मण के चरित्र को इतना महान बनाने का प्रयास किया गया था ताकि अन्य वर्ण के लोग उसका अनुसरण कर सके। ब्राह्मण मुख के समान है, वह ब्रह्मा की संतान है, उसका जन्म शुभ कर्मों के लिए ही हुआ है। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, वह मानव समाज का मस्तिष्क है, वह समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्था करता है, वह क्षत्रियों को भी दंडित कर सकता है। समस्त धार्मिक क्रिया विधि ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न की जाती है, इससे देवता प्रसन्न रहते हैं। वह कल्याण स्वरूप है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन, दान प्रतिदान, समदम, तप, त्याग, शौच, शांति, अर्ज, ज्ञान तथा अस्तिकता ब्राह्मण के मुख्य कर्म माने गए हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण आदि का अध्ययन करे। ईश्वर ने ज्ञान रूपी भंडार की रक्षा के लिए ही ब्राह्मण को पृथ्वी पर पैदा किया है। ब्राह्मण को तेजस्वी तथा ब्रह्मा ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। ब्राह्मण की महान शीलता दया, ममता, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा आदि मानवीय गुणों से विभूषित होना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि की दाहकता जलाकर भस्म कर दे सकती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को तेज से विभूषित होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ब्राह्मण का सर्वोच्च महत्व सूचित होता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, उनकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। उसके सामने राजाओं, महाराजाओं तक को झुकना पड़ना था। धार्मिक क्रियाएं उसी के द्वारा संभव होती थी। यदि ब्राह्मण उपरोक्त गुणों से रहित हो जाता था तो शूद्र समझा जाता था। जिस समाज में ब्राह्मण पतित हो जाए वह समाज अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाएगा। ब्राह्मण समाज रूपी शरीर का प्राण है, अग्नि में जब तक दहकता है तब तक वह अग्नि है, इससे अलग वह राख का ढेर है। इसी तरह ब्राह्मण को भी समझना चाहिए। नंबर 2, क्षत्रिय गुण एवं कर्म। यह वर्ण व्यवस्था कर्म में दूसरे स्थान पर आता है। इसकी प्रकृति रजोगुण प्रधान मानी जाती है। यह वर्ण कामी, क्रोधी, साहसी तथा तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न माना जाता था। इसका मुख्य कार्य शासन करना, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन, वर्ण व आश्रम धर्म की मर्यादा को बनाए रखना तथा राजा राज्य भोग करना था। मनु ने इसके कर्मों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्रजा नाम रक्षणम दान मिज्जा अध्ययन मेव च विषय दवा शक्ति सच्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ, अध्ययन, नित्य तथा विषयाशक्ति का होना क्षत्रियों का लक्षण है। कामोपभोग पर शंका उत्पन्न की गई है। कामी राजा प्रजा का पालन नहीं कर सकता और ना तो वीरता के गुण तो ही विभूषित हो सकता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने छात्र धर्म का वर्णन करते हुए कहा है कि क्षत्रिय को वीरता के गुण से युक्त होना चाहिए। क्षत्रिय के लक्षण उन्नत ललाट, चमत्कृत चछु, लंबी बाहु, विस्तृत वच स्थल, मांसल जंगल, नुकोली मूछ, वीरता का वर्ण करने वाला, दुष्टों का नाश करने वाला, सज्जनों का रक्षक, प्रजापालक, वैभव ऐश्वर्य से विभूषित क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय आड़ जाति की भुजा थे। उनके सिर पर सिर अस्त्राण, पीठ पर तरकस, हाथ में धनुष तथा तलवार आदि अस्त्र शस्त्र उनकी शोभा थे। क्षत्रिय स्वप्न में भी मृत्यु से नहीं डरता। वह भूमि माता का रक्षक है, युद्ध उसका कर्म स्थल है और वह अपमानित जीवन नहीं जी सकता। वह कठोर दंड देता है। दुष्ट ब्राह्मण की तपस्या से शांत नहीं होते, वे क्षत्रिय की तलवार से शांत होते हैं। रावण के लिए राम का बाण आवश्यक था। राक्षसों को इंद्र का व्रज ही भेद सकता था। छात्र धर्म मरना और मारना ही है। क्षत्रियों के कुछ कर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रजा की रक्षा करना। नंबर 2, देश को बाहरी आक्रमण से मुक्त करना। नंबर 3, वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करना। नंबर 4 पृथ्वी पर शांति एवं सुव्यवस्था का राज्य कायम करना। नंबर 5 अधर्म से धर्म की रक्षा करना व दुष्टों का नाश करना। नंबर 6 शासन करना व चल अचल संपदा का भोग करना। नंबर 7 दान देना तथा कर वसूल करना। नंबर 8 शास्त्रों के अनुसार राज्य करना तथा मृत्यु से न डरना। नंबर 9 आत्म सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना। नंबर 10 ब्राह्मण का सम्मान करना तथा उसकी राय लेना। उपरोक्त गुणों के अलावा क्षत्रियों के और अनेक गुण शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। ईश्वर ने साहित्य कला समाज व धर्म की रक्षा के लिए ही क्षत्रियों को पैदा किया था। बिना क्षत्रिय के पृथ्वी सिर विहीन सौ के समान हो जाएगी। विधाता ने सभी देवताओं को तेज को लेकर क्षत्रियों को बनाया था। क्षत्रियों को आचार नीति, दंड नीति, कूट नीति आदि का ज्ञान होना चाहिए। उसे ब्राह्मण में भक्ति रखनी चाहिए। प्रजा की रक्षा से बढ़कर क्षत्रिय का दूसरा धर्म नहीं होता। यही नहीं बल्कि क्षत्रिय कन्या को भी छात्र धर्म से युक्त होना चाहिए। उसे राजा की अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभालने की शक्ति रखनी चाहिए। उसे वीर पुत्र परवस्नी होनी चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से पता चलता है कि क्षत्रिय वर्ण अन्य वर्णों से अधिक शक्तिशाली तथा शासक वर्ग था। समस्त प्राचीन भारत की राजाओं महाराजाओं की कथा इस बात की प्रमाण है। नंबर 3 वैश्य के कार्य अथवा गुण। वैश्य का प्रधान कार्य पशुपालन तथा व्यापार था। यह वर्ग राजसिक तामसिक गुण प्रधान होता था। मनुस्मृति में लिखा है कि पशु नाम रक्षणम दान मिज्जा अध्ययनमेव च वाणिक कुसीदम च वैश्य किसी मेव च। अर्थात पशुओं की रक्षा करना, दान यज्ञ अध्ययन वाणिज्य ब्याज लेना तथा कृषि कर्म करना वैश्यों के कर्तव्य बतलाए गए हैं। वैश्यों से ही समाज में संपन्नता आती है। ऋग्वेद में इस वर्ण का वर्णन आता है। यह वर्ण गांवों की सेवा करता है, धन का संग्रह करता है, पशुओं का पालन करता है, समाज को सुखी और समृद्धिशाली बनाने की कोशिश करता है। अर्थशास्त्र को स्वयं एक उपवेद माना जाता है। वैश्य को शरीर का जंघा इसलिए कहा गया है कि यह समाज को सुपुष्ट रखता है। किसी भी समाज में वैश्य का प्रमुख स्थान होता है। आर्यों की व्यवस्था में वैश्य कुबेर का काम करता था। इस प्रकार वैश्य का महत्व भी सूचित होता है। नंबर 4 शूद्र वर्ण कर्म व कार्य। कुछ विद्वानों ने शूद्रों को अनार्य तत्व माना है। इनका रंग काला होता था तथा ये तमो गुण प्रधान होते हैं। शूद्र का प्रमुख कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। पैर पूरे शरीर के भार को वहन करता है। उससे बढ़कर सेवक भला कौन हो सकता है। इसी प्रकार शूद्र आर्यों के समाज के पैर थे। इनका कार्य सेवा था। इन्हीं से इन्हें मुक्ति मिलती थी। मनु ने बतलाया है कि शूद्र का कार्य बिना ईश्वर भाव के अन्य वर्णों की सेवा करना है। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि अपने एक अंग को साहित्य में इतना गर्हित क्यों मान लिया गया था। जो वर्ण समाज की सेवा बिना इच्छा किए करता हो वह गर्हित किसी हालात में नहीं हो सकता है। आखिर शूद्र सेवक थे, समाज की सेवा करते थे, अतः उन्हें और ऊंचा पद मिलना चाहिए था। परंतु आर्यों के साहित्य में सर्वत्र उनके प्रति घृणा दिखलाई पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। वैदिक आर्यों ने शूद्रों को हे दृष्टि से नहीं देखा था। उनका कार्य सबसे महत्व का समझा जाता था। जो आर्य उस विराट पुरुष के पैर के रूप में शूद्र की कल्पना करते हैं, उनका विचार गलत नहीं हो सकता। जिस प्रकार पैर के अभाव में शरीर बेकार है, उसी प्रकार शूद्रों के अभाव में वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य साहित्य में शूद्र उनको माना जाता जो नरबलि में विश्वास रखते थे, यज्ञों को नष्ट करते थे, ज्ञान शून्य होते थे, किसी प्रकार के आचार विचार से हीन थे। इन शूद्रों को भी इस बात का अधिकार था कि वे शुभ कर्मों से अपने वर्ण को बदल सकते थे। आरंभ में केवल एक ही वर्ण था और वह था ब्राह्मण वर्ण। परंतु बाद में पतित होकर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आदि तीन वर्णों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार शूद्र कोई अलग वर्ण नहीं था, बल्कि वह भी द्विज वर्ण का ही अंग था। वह अपने घोड़ित कर्तव्य के कारण ही कालांतर में शूद्र के नाम से जाने गए। उपयुक्त चारों वर्णों के गुण व कर्मों के विभाजन से पता चलता है कि आर्यों की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। वर्ण का प्रमुख लक्षण। वर्णों का प्रमुख लक्षण शील, धर्म, गुण और वृत्त है। धर्म व्यवस्था में कर्म, जन्म आदि के अपेक्षाकृत गुण तथा शील को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के लिए शील, क्षमा, दया, करुणा, सहानुभूति, अनुशंसा आदि गुण बतलाए गए हैं। क्षत्रिय के लिए धृति, वीरता, साहस, दान आदि गुण बतलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वैश्य को अनुष्ठानों में श्रद्धा भाव तथा ब्राह्मण व क्षत्रियों का पोषण बताया गया है। संतति, शौच और तीनों वर्णों की सेवा शूद्र का गुण कहा गया है। उपरोक्त वर्णों के प्रमुख लक्षणों के अलावा कुछ सामान्य लक्षण ऐसे हैं जो सभी वर्णों में पाए जाते हैं। मूल्यांकन। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रकारों ने वर्णों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए वर्ण धर्मों का निर्धारण कर हिंदू समाज को विभिन्न अस्त्रों में बांटा है। वर्ण धर्मों के आधार पर हिंदू समाज का अस्त्रीकरण वर्ण व्यवस्था है। हिंदू समाज के सर्वांगीण विकास तथा समाज को संतुलित ढंग से कार्यात्मक बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया गया है। ज्ञान, रक्षा, जीविका तथा सेवा मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज संतुलन की दृष्टि से इस व्यवस्था को जन्म दिया गया है। इसके जरिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा तथा एक दूसरे के कर्तव्य क्षेत्र में हस्तक्षेप रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में समन्वय स्थापित किया गया है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का दर्शन प्राकृतिक नियमों की तरह है। यह सहज, क्रियाशील और स्वाभाविक व्यवस्था है। उचित व्यक्ति को उचित पेशे में लगाना इनका उद्देश्य है, क्योंकि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान नहीं होते। श्री पांड्या के अनुसार हिंदू संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था जहाँ एक और लौकिक आकांक्षाओं को घटाकर मनुष्य को पूर्ण अपरिग्रह की ओर ले जाती है, वही दूसरी ओर पूर्ण आनंद और पूर्ण शक्ति का भोक्ता बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। वर्ण व्यवस्था का आधार हिंदू सामाजिक जीवन में इसका महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रकारों ने हिंदू सामाजिक जीवन में संतुलन, समन्वय और सहयोग की स्थापना तथा व्यक्ति और समाज की पूर्ण उन्नति के लिए वर्ण धर्मों के निर्धारण के आधार पर हिंदू समाज का जो अस्त्रीकरण किया है, उसे वर्ण व्यवस्था की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को किसी वर्ण की सादृश्यता प्राप्त होने का क्या आधार है। व्यक्ति जन्म अथवा कर्म में से किसी आधार पर किसी वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा के चार अंगों से वर्णों की उत्पत्ति हुई, परंतु वर्ण धर्म की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए विवाद पैदा हो गया है कि वर्णों की सदस्यता के लिए जन्म या कर्म में से कौन आधार है। सवाल उठता है कि वर्ण की सदस्यता के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति का किस परिवार में जन्म हुआ है, या यह जरूरी है कि उनके कर्म या गुण किस प्रकार के हैं। इस संबंध में विद्वानों में मत भिन्न है। कुछ लोग जन्म और कुछ लोग कर्म को आधार मानते हैं। विभिन्न विद्वानों का मत निम्नलिखित है। डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज ने गीता के चातुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से तथा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर मत व्यक्त किया है कि वर्ण की सदस्यता जन्म और कार्य या गुण दोनों पर आधारित है। गीता के उक्त श्लोक के आधार पर यह कर्म तथा ऋग्वेद पुरुष सूक्त के ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैरों के शूद्र का जन्म हुआ है के आधार पर यह जन्म से निर्धारित होती है। नंबर 2, श्री बसंत कुमार चट्टोपाध्याय का मत है कि इसके विपरीत है। उनके अनुसार कर्म या गुण नहीं अपितु जन्म के आधार पर वर्ण की सदस्यता निर्धारित होती है। गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि यदि कर्म के आधार पर वर्ण की सदस्यता निर्धारित होती तो वह क्षत्रिय वर्ण में आते, क्योंकि युद्ध करना उनका व्यवसाय था, परंतु वह ब्राह्मण कहलाते थे क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी बात की तार्किकता सिद्ध करने के लिए अश्वत्थामा का भी हवाला दिया था तथा कहा है कि उसमें ब्राह्मण का कोई भी गुण नहीं था तथा वह क्षत्रियों का कर्म करता था, परंतु वह ब्राह्मण कहा जाता था। युधिष्ठिर और भीम के उदाहरण के आधार पर वह कहते हैं कि गुणों के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता तो दोनों के अलग अलग वर्ण होने चाहिए थे। युधिष्ठिर सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे तथा उनमें ब्राह्मण के गुण थे, परंतु जन्म के कारण वह क्षत्रिय थे। श्री चट्टोपाध्याय का मत है कि गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति के वर्ण के निर्धारण में कठिनाई है, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता है किसी एक वर्ण में और उसके गुण होते हैं किसी दूसरे वर्ण के। गुण की ठीक ठीक पहचान भी कठिन है। बाहर से कोमल और उदार दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति भीतर से रूखा, उग्र और कठोर हो सकता है। गुणों में परिवर्तन भी हो सकता है, वाल्मीकि का उदाहरण। अतः इस दृष्टि से भी गुण के आधार पर वर्ण का निर्धारण अव्यवहारिक है। उन्होंने अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहा है कि क्षत्रियोचित गुणों के साथ साथ उनमें सम, दम, तम, सुचिता, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता जैसे ब्राह्मणोचित गुण भी विद्यमान थे। उन्हें क्षत्रिय वर्ग का पेशा छोड़कर ब्राह्मण वर्ग अपमाने की छूट होनी चाहिए थी। यदि वह ऐसा करते तो कोई पाप नहीं होता, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान कराते हुए कहा कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अर्जुन का जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ था। यह इस बात का सबूत है कि वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। विश्वामित्र के उदाहरण से श्री बसंत कुमार चट्टोपाध्याय के विचारों का खंडन होता है। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु अपने तप द्वारा उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। नंबर 3, महात्मा गांधी के अनुसार सागर में व्यक्ति का कुछ स्वभाव या जन्मजात संसार में व्यक्ति का कुछ स्वाभाविक व जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसी निश्चित सीमाओं के साथ जन्म लेता है जिन्हें वह लांघ नहीं सकता। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ण का नियम बनाया गया था। यह नियम कुछ निश्चित प्रवृत्ति वालों मनुष्यों के लिए निश्चित कार्य क्षेत्रों की स्थापना करता है। उनके इस मत के आधार पर तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण जन्मजात प्रवृत्ति कोष्टक में गुणों पे आधारित है, परंतु इसके साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि वर्ण का नियम है कि एक व्यक्ति अपनी रोटी के लिए अपने पूर्वजों का पेशा अपनाएगा। प्रत्येक बच्चा स्वभावतः अपने पिता का ही पेशा चुनता है। इससे यह आभास मिलता है कि वर्ण की सदस्यता जन्म पर आधारित है। नंबर 4, डॉक्टर राधा किशन के अनुसार वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारंभ में केवल एक वर्ण था। हम सबके सब या तो ब्राह्मण या शूद्र थे। एक स्मृति के अनुसार जन्म लेने के समय व्यक्ति शूद्र होता है तथा शूद्र होकर वह ब्राह्मण बनता है। सामाजिक आवश्यकताओं और कर्मों के आधार पर समाज में विभिन्न वर्णों के विभाजन हुए। इनका मत है इस योजना का यह ध्येय अवश्य था कि अनुवांशिकता और शिक्षा ही शक्तियों का प्रयोग कर विभिन्न वर्गों के सदस्यों के यथा योग्य भावना और परंपरा का विकास किया जाए, परंतु इस विभाजन को कठोर नहीं समझा जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि व्यक्तियों और समूह ने अपना सामाजिक वर्ण बदल लिया। विश्वामित्र अजमीर और पुरामीण को ब्राह्मण धर्म में स्थान दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना भी की। संक्षेप में वर्ण व्यवस्था का वास्तव में स्वाभाविक योग्यताओं और कर्मों पर आधारित एक गतिशील और व्यापक व्यवस्था थी, जिसने आगे चलकर लोगों में एक मिथ्याभिमान की भावना भर दी और उसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा की जो कटु रूप विकसित हुआ वह आज हमारे सम्मुख है। नंबर 5, डॉक्टर घुरिया के अनुसार, डॉक्टर घुरिया के अनुसार प्रारंभ में केवल आर्य और दास थे। आर्यों ने आदिवासियों को पराजित करने के बाद उन्हें दास कहा। अपने तथा उनके बीच के अंतर के लिए उन्होंने वर्ण शब्द का प्रयोग किया। उनका कहना है कि यह निश्चित है कि वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा या कर्म था, ना कि रंग और जन्म था। पतंजलि के महाभाष्य तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि उस समय कर्म पर अधिक बल दिया जाता था। अपने इस तर्क के संबंध में डॉक्टर घुरिये ने विश्वामित्र राजपुताना के पौरवार सेवक ब्राह्मण तथा व्यास मुनि का उदाहरण प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, उपयुक्त विचारकों के मतों से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था के आधार के संबंध में काफी मतभेद है। कुछ लोग कर्म को वर्ण व्यवस्था का आधार मानते हैं। इन मतभेदों के विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों में से किसी एक को आधार मानना न केवल गलत अपितु अवैज्ञानिक है। वर्ण और जाति में अंतर। गांधी जी का मत है कि वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा में कोई संबंध नहीं है। जाति प्रथा समाज का खंड विभाजन करती है, उसमें ऊंच नीच की भावना निहित है। वर्ण व्यवस्था समाज को ना तो खंड खंड करती है और ना उसमें नीच ऊंच की भावना है। उनका कहना था, वर्ण हमारे अधिकारों को नहीं कर्तव्यों को बताता है। यह निश्चित उन पेशों से संबंधित है जो कि मानव कल्याण के लिए अनिवार्य है। इसका यह भी तात्पर्य है कि कोई भी पेशा बुरा भला नहीं है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था से सेवा कार्य भावना निहित मानते थे। डॉक्टर राधा कृष्ण का मत है कि चार वर्ण मूल जातीय भेदों से ऊपर हैं। यह एक ऐसा वर्गीकरण है जो सामाजिक तथ्य और मनोविज्ञान पर आधारित है। यह एक ऐसा साचा है जिसमें सब मनुष्यों को उनकी व्यवसायिक योग्यता और स्वभाव के अनुसार ढाला जा सकता है। वर्ण धर्म का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के विधान को पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए। हमें अपनी योग्यता के अनुकूल ही अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए। जिसके योग्य हम नहीं है उसके पीछे दौड़कर अपनी ऊर्जाओं का अपव्यय करने में कोई लाभ नहीं है। आज जाति प्रथा मित प्राय है। पहले वर्ण व्यवस्था में स्वस्थ सामाजिक गतिशीलता थी और बहुत समय तक वर्ण अनुवांशिक सुनियत जातियां नहीं बने। संक्षेप में वर्ण व्यवस्था वास्तव में स्वाभाविक योग्यताओं और कर्मों पर आधारित एक गतिशील व व्यापक व्यवस्था थी जिसने आगे चलकर लोगों में एक मिथ्या अभिमान की भावना भर दी और उसके परिणाम स्वरूप जाति प्रथा का जो कटु रूप विकसित हुआ वह आज हमारे सम्मुख है। साधारणतः लोग वर्ण और जाति दोनों को एक दूसरे का तत्त्व मानते हैं, परंतु महात्मा गांधी और डॉक्टर राधा कृष्ण के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों तत्त्व नहीं है बल्कि दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के नाम है। सिद्धांतः वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। हर वर्ण के अपने धर्म है तथा हर वर्ण के लोगों के अपने विशेष गुण है। जाति प्रथा गुणों पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित है। हर जाति का अपना पेशा है, परंतु आज यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति अपनी जाति का ही पेशा करे। जाति के लिए निर्धारित पेशे से अलग पेशा करने पर भी व्यक्ति उस जाति का विशेष का ही सदस्य माना जाता है। वर्ण की उत्पत्ति और वर्ण धर्मों का तथा जाति की विशेषताओं का विश्लेषण करने से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि वर्ण और जाति दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण और जाति में अंतर निम्नलिखित है। नंबर एक, वर्ण व्यवस्था काफी लचीली एवं परिवर्तनशील है जबकि जाति व्यवस्था कठोर एवं अपरिवर्तनशील है। गुण तथा कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन के अनेक उदाहरण प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन जाति परिवर्तन के उदाहरण नहीं पाए जाते। अपनी जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति की सदस्यता ग्रहण करना साधारणतः संभव नहीं रहा है। नंबर दो, वर्ण व्यवस्था गुण तथा कर्म पर आधारित है जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर। पूर्व काल में व्यक्ति अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में पहुंच सकता था, लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसा कभी भी संभव नहीं रहा है। जाति व्यवस्था के जन्म पर आधारित होने के कारण चाहे व्यक्ति के कर्म कैसे क्यों न हो, वह एक जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति का सदस्य नहीं बन सकता। एक शूद्र के गुण व कर्म चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हो, वह ब्राह्मण जाति का सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 3, वर्ण में विवाह, भोजन एवं सामाजिक संपर्क संबंधी प्रतिबंध नहीं होते, जबकि जाति व्यवस्था में कठोर प्रतिबंध पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में अंतर वर्ण विवाह के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। उस समय विभिन्न वर्ण के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे और वे एक दूसरे के साथ खान पान के संबंध भी रखते थे। जाति व्यवस्था के अंतर्गत वैवाहिक और खान पान संबंधी इतने कठोर प्रतिबंध पाए जाते हैं कि कोई अन्य जाति के लोगों के साथ ना तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है और ना ही वह खान पान के संबंध रख सकता है, यद्यपि आजकल वे प्रतिबंध शिथिल होते जा रहे हैं। नंबर 4, वर्णों की संख्या केवल 4 है, जबकि जातियों की संख्या काफी अधिक है। रोज के अनुसार वर्तमान में जातियों की संख्या करीब 4,000 है। वर्ण व्यवस्था में काफी खुलापन पाया जाता है, जबकि जाति व्यवस्था में इसका अभाव है। वर्ण खुली वर्ग प्रणाली है, जबकि जातियां बंद वर्ग प्रणाली से अधिक निकट हैं। नंबर 5, वर्ण व्यवस्था में समाज का खंडात्मक विभाजन तथा ऊंच नीच की भावना देखने को नहीं मिलती, जबकि जाति व्यवस्था में दोनों मौजूद है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज अनेक पृथक पृथक खंडों में बट गया है, जिनमें ऊंच नीच की भावना काफी तीव्र रूप में पाई जाती है। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक महत्व। नंबर 1, वैज्ञानिक आधार। यह व्यवस्था समाज का वैज्ञानिक आधार पर अर्थात नियमबद्ध व क्रमबद्ध विभाजन करती है। इसके द्वारा मनमाने ढंग से समाज का विभाजन नहीं किया जाता है। यह कर्मों या गुणों के आधार पर समाज का विभाजन या उसका अस्त्रीकरण करती है। आज के प्रगतिशील समाज में भी व्यक्ति को अपने गुण के अनुसार कार्य तथा व्यक्तित्व का विकास करने की छूट है। किसी भी समाज का वैज्ञानिक आधार वही विभाजन हो सकता है कि व्यक्तियों के गुणों के आधार पर कार्य और स्तर प्राप्त हो। नंबर 2, गुणों के आधार पर समाज के विभाजन से इच्छा और प्रतिबद्धता नहीं बढ़ती, बस व्यक्ति में हीनता की भावना भी नहीं होती। गुणों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, परंतु समाज में अनुचित अधिकार और स्तर पाने के लिए संघर्ष नहीं होगा। नंबर 4, व्यवहारिक नैतिक नियम का बोध। यह व्यवस्था नैतिक कर्म या जीवन में व्यवहारिक नैतिक नियम का बोध कराती है। रविन्द्रनाथ मुखर्जी का कहना है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज के सदस्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ नियमों व कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया गया था और प्रत्येक से यह आशा की जाती थी कि वह उन नियमों का अपना धर्म या नैतिक कर्तव्य समझकर उनका पालन करता रहेगा। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित समाज के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनकी वर्ण व्यवस्था से पूर्ति होती है। इस व्यवस्था की विशेषताओं के कारण ही महात्मा गांधी और राधा कृष्ण ने इसमें तथा जाति व्यवस्था में अंतर बताते हुए इसे कायम रखने का समर्थन किया है। वर्ण व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन का मूल तत्व। हिंदू सामाजिक संगठन विश्व की प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था के रूप में है। इसके साथ ही अनेक प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं अतीत के काल में विलीन हो गई, वे इतिहास की वस्तु बन गई है। परंतु हिंदू सामाजिक व्यवस्था परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनों के साथ आज भी विश्व में अतीत और वर्तमान की कमी बनाए हुए विद्यमान है। परिस्थितियों के अनुसार ब्रह्मा स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद सिद्धांत का इस व्यवस्था के मूल तत्वों में कोई अमूल परिवर्तन नहीं हो पाया है। सिद्धांत रूप में हिंदू सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित मूल तत्व हैं। धर्म ऋण पुरुषार्थ एवं त्रिवर्ग वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था संस्कार कर्म तथा पुनर्जन्म ये तत्व ही हिंदू सामाजिक व्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति के आधार हैं। अन्य देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं या तो व्यक्तिवाद या व्यक्ति के स्वतंत्र विकास को पूरी तरह जकड़ देने के लक्ष्य से ओतप्रोत हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का इन दोनों से अलग अलग लक्ष्य है। हिंदू मनीषियों ने जिस व्यवस्था को काफी चिंतन के बाद जन्म दिया उसमें व्यक्ति और समाज दोनों को एक समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू मनुष्यों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति एवं उसके व्यक्तित्व के विकास के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति एवं उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने व्यक्ति के विकास को ही सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का आधार माना। हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक संगठन की स्थिरता एवं अस्तित्व के बीच संतुलन को लक्ष्य माना गया है। इस व्यवस्था के जो मौलिक तत्व अपनाए गए हैं वे इस लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं। व्यक्ति के समुचित विकास के लिए पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था पंच महायज्ञ और संस्कार तथा सामाजिक स्थिरता के लिए वर्ण व्यवस्था कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को अपनाया है। भौतिक दृष्टि से जहाँ व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक स्थिरता एवं अस्थायित्व के बीच संतुलन का लक्ष्य अपनाया गया है वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू दर्शन में जिन बातों पर बल दिया गया है उनकी इन मौलिक तत्वों से पूर्ति होती है। मूल्यांकन हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधनों पर दृष्टिपात करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक व्यवस्था के एक मौलिक तत्व के रूप में है। यह हिंदू सामाजिक संगठन के मूल आधारों में एक है। यह व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक स्थिरता एवं अस्थायित्व के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसके जरिए व्यक्ति के जन्मजात गुणों को विकसित होने का अवसर प्रदान करते हुए समाज में द्वंद रोकने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत गुण प्रवृत्तियों के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान निश्चित किया गया है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की धुरी वर्ण और आश्रम सामाजिक व्यवस्थाएं आर्य सभ्यता व वैदिक सामाजिक जीवन की दो आधारशिलाएं मानी गई हैं। वर्ण व्यवस्था के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को निश्चित रूप देने का प्रयत्न किया गया है जिससे कि समाज में विभिन्न वर्गों में कार्यों का विभाजन सुचारू ढंग से हो जाए। पर यह सुचारू ढंग तब तक व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो सकता जब तक कि समाज व्यवस्था की इकाई व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित व संगठित ना किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव जीवन को नियोजित करने हेतु आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को चार भागों या आश्रमों में कोष्टक ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में बांटकर उसके संतुलन विकास करने की व्यवस्था की गई है। और फिर समाज को भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित करके सामाजिक कार्यों का वितरण तथा नियमन किया गया है। उस समय समाज व व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित करने के इससे अच्छे साधन की और कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वर्ण व्यवस्था धर्म का अर्थ वर्ण आश्रम दो शब्दों वर्ण तथा आश्रम से मिलकर बना है जबकि वर्ण समाज को चार वर्णों में विभाजित करने की एक योजना है। आश्रम मानव जीवन के चार अस्त्रों का द्योतक है पर दोनों ही समाज या व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित व नियमित करने की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था तभी प्रभावशील बन सकती है जबकि इस व्यवस्था के निर्णायक अंग सामाजिक प्राणी या वर्ग के सदस्य अपने अपने पूर्व निश्चित कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करते रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के लिए और प्रत्येक आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यक कार्यों या कर्तव्यों का निर्धारण समाज के द्वारा किया गया है। इन्हीं कर्तव्यों को धर्म की संज्ञा दी गई है। इन्हें धर्म इसलिए कहा गया है कि यह समाज द्वारा निर्धारित व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है जिन्हें पालन करना व्यक्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति हेतु आवश्यक है। जीवन का परम ध्येय आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना और इस उद्देश्य की पूर्ति वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था में अंतर्निहित नैतिक नियमों या कर्तव्यों के पालन द्वारा ही संभव है। इस अर्थ में वर्ण आश्रम धर्म उन नैतिक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व की समष्टि है जिनका निष्ठा पूर्वक पालन करने की आशा वर्णों के सदस्यों से की जाती है और जिन्हें वर्ण या आश्रम अपने सदस्यों के लिए निर्धारित करता है। वर्ण आश्रम धर्म सामाजिक व्यवस्था की धुरी। वर्ण आश्रम धर्म कुछ नैतिक नियमों या आदर्श व्यवहार प्रतिमानों का संकलन है। इन नियमों के अनुसार यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण का सदस्य होगा और वह उस वर्ण के सदस्य के रूप में उसे कौन कौन से कार्य करने हैं जिनके द्वारा समाज कल्याण व व्यवस्था संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों को करने के योग्य हो। इसलिए व्यक्ति को आवश्यक ढंग से तैयार करने अर्थात उसके व्यक्तित्व को विकसित करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति भी तब हो सकती है जबकि व्यक्ति के व्यक्तित्व को धीरे धीरे विकसित करने की एक योजना हो और उस योजना के अंतर्गत उसके लिए विकास के प्रत्येक स्तर पर कुछ आदर्श व्यवहार प्रतिमान या धर्म को निर्धारित कर दिया जाए। इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म सम्मिलित रूप में व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के व्यवहारों को इस प्रकार नियंत्रित तथा आयोजित करता है कि वह समाज व्यवस्था का एक आधार बन जाता है और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था उसी के चारों ओर घूमती रहती है। यह इस कारण होता है कि वर्ण आश्रम धर्म सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन के किसी पक्ष से संबंधित नहीं है अपितु संपूर्ण से संबंधित है और मानव जीवन के आदि से अंत तक के सभी महत्वपूर्ण पक्षों को निर्देशित व नियंत्रित करता है। व्यक्ति अपने जीवन के किस काल या अवस्था में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा इसका निर्धारण आश्रम धर्म के द्वारा होता है और साथ ही सामूहिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए क्या करना है इसका निर्देश वर्ण धर्म में होता है। अतः वर्ण आश्रम धर्म वास्तव में सामाजिक जीवन को व्यवस्थित व संगठित करता है। यह बात वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था के महत्व के विषय में अलग अलग विवेचना करने से और भी स्पष्ट हो जाएगी। नंबर एक, वर्ण व्यवस्था या धर्म का महत्व। सामाजिक कार्यों को सुचारू ढंग से संपादन समाज व व्यक्ति के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था से इसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इस व्यवस्था ने समाज का बड़ा कल्याण किया है। इसने हिंदू समाज को एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक आदर्श प्रदान किया। वर्ण धर्म द्वारा संचालित हिंदू समाज व्यवस्था एक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित व्यवस्था बन गई, जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज दोनों का ही कल्याण संभव हुआ। वर्ण धर्म के आधार पर समाज के सभी व्यक्ति पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्य के एक सुदृढ़ सूत्र में एक दूसरे से संबंध हो जाते हैं। जो एक का अधिकार है वही दूसरे का कर्तव्य और बिना अपने कर्तव्यों का पालन किए कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ ब्राह्मण अपने वर्ण धर्म पालन किए बिना अर्थात समाज के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास में योगदान दिए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसे वैश्य वर्ण पर विशेष रूप से आधारित रहना पड़ता है। और चूंकि ब्राह्मण यह जानता है कि अन्य वर्णों के द्वारा उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, इसी कारण वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को चिंतित किए बिना ही ब्राह्मण अपने वर्ण धर्म का पालन निष्ठा पूर्वक करता रहता है। यही बात दूसरे वर्णों पर लागू होता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार अपने कार्यों को ठीक ढंग से करता है तो समाज व्यवस्था एवं संगठन का स्तर कितना ऊंचा होगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वास्तव में वर्ण धर्म में व्यक्ति तथा समष्टि समाज दोनों का कल्याण निहित है। अपने प्रतिभा योग्यता तथा स्वाभाविक मनोवृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक क्षेत्र विशेष में अपनी चरमोन्नति करने का सुअवसर वर्ण धर्म में ही प्रदान करता है। सामाजिक कार्यों के विभाजन के सिद्धांत की उपयोगिता को जिस पर वर्ण धर्म या वर्ण व्यवस्था आधारित है आधुनिक समाज शास्त्री व विशेषकर अर्थशास्त्री भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की विभाजन व्यवस्था के माध्यम से ही हम व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित व व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अंतिम रूप में समाज कल्याण, समाज व्यवस्था व संगठन को एक ठोस आधार मिल जाता है। वास्तव में वर्ण धर्म व्यवस्था में स्वार्थ तथा परार्थ दोनों का अपेक्षित समन्वय है, क्योंकि यद्यपि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है या कर सकता है, फिर भी सबका एक सार्वजनिक आदर्श भी होना चाहिए और वह आदर्श है लोक कल्याण का चिंतन। वर्ण धर्म में व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति तथा लोक कल्याण का चिंतन दोनों ही अंतर्निहित है। व्यक्ति समाज की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, परंतु वर्ण धर्म का पालन करते हुए वह अपने व्यवहार या कार्यों का एक सामाजिक स्तर भी बनाए रखता है। लोक कल्याण का आदर्श उसकी पृथक सत्ता को समष्टि में मिला देने में सहायक सिद्ध होता है, और यह तभी संभव होता है जबकि व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन उचित ढंग से करता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण धर्म हिंदू समाज व्यवस्था का एक केंद्रीय आधार है। नंबर 2, आश्रम व्यवस्था या धर्म का महत्व। समाज व्यवस्था को व्यक्ति के जीवन व्यवस्था से पृथक करके देखा नहीं जा सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे से अति घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर आधारित हैं। हिंदू आदर्श के अनुसार ज्ञान, प्रज्ञा, धर्म तथा मोक्ष जीवन व्यवस्था के चार प्रमुख आधार हैं, और इन आधारों को एक व्यवहारिक रूप देने और उस रूप में समाज व्यवस्था को सुसंगठित करने में सहायता करना आश्रम व्यवस्था का प्रमुख आधार है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक समस्त सांसारिक आकर्षणों तथा चिंताओं से दूर रहकर गुरु के नियंत्रण व निर्देशन में इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखता हुआ ज्ञान अर्जन करता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों के ही जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान तथा संयम दोनों ही आवश्यक है, और इन दोनों की प्राप्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। इसके पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ की वह विवाह के पश्चात सामाजिक विधि के अनुसार अपनी स्वाभाविक यौन इच्छाओं की तृप्ति करता है, संतानों को जन्म देकर प्रति ऋण को चुकाता है व परिवार व समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहयोग देता है। जीविका उपार्जन के द्वारा अपने तथा अपने सब परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करके अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाता है, और यज्ञ, अतिथि सत्कार आदि के द्वारा देव ऋण को चुकाता है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को किन आदर्शों तथा कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इसका निर्देश आश्रम व्यवस्था में होता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी कार्य व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और उस अवधि में अपने को धीरे धीरे इंद्रिय जन सुखों से दूर हटाने का प्रयत्न करता है। यही पर वह त्याग, सेवा तथा पवित्र जीवन संबंधी सिद्धांतों को एक व्यवहारिक स्तर पर रखकर वास्तविक प्रयोग में लाता है। व्यक्तिगत जीवन तथा समाज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये सभी गुण व कर्म आवश्यक हैं। अंत में संन्यास आश्रम में सब कुछ छोड़कर व्यक्ति त्याग, सेवा तथा ईश्वर चिंतन का एक मूर्तिमान आदर्श बन जाता है, जो कि केवल व्यक्तिगत जीवन को भी ऊंचा उठाता है और उसे एक सार्थक रूप देता है। इसी स्तर पर व्यक्ति तथा समाज में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अतः स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इससे दोनों के विकास तथा संवर्धन में योग मिलता है। इस व्यवस्था के नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है। इस आवश्यकता की पूर्ति ब्रह्मचर्य करता है। भौतिक सुखों का उपभोग गृहस्थ आश्रम में किया जा सकता है, परंतु सांसारिक भोग विलोस में आजन्म लिप्त रहना जीवन का अंतिम व उच्चतर लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम भाग में वह निष्प्रिय तथा निरीह होकर त्यागमय त्याग में व सेवा में जीवन शांति पूर्वक ढंग से व्यतीत कर आत्मोत्सर्ग व परम गति को प्रदान करने के लिए प्रयत्नशीलता वांछनीय है। इसकी पूर्ति वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम से हो सकती है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तथा उन्नयन करने का सरल सोपान है। वस्तुतः वर्ण तथा आश्रम के नियमों पर ही संपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था आधारित थी। कौटिल्य के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि उसके राज्य में कोई वर्ण आश्रम धर्म का उल्लंघन न करे, क्योंकि ऐसा होने पर समाज में एक विचित्र तनाव विघटन तथा मत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो इस लोक को नष्ट कर देगी। वर्ण आश्रम धर्म उस सामाजिक श्रृंखला का द्योतक है जो कि समाज के विविध और विरोधी तत्वों को एक सूत्र में बांधता तथा उनमें एक संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में सहायक होता है। इस संतुलन की स्थिति को समाज व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण आश्रम धर्म में एक सुव्यवस्थित व सुस्थित समाज संगठन का ही नहीं उसकी प्रगति का भी आश्वासन है। जन सेवा का मंगलमय आदर्श है, त्याग में भोग का निर्मल निमंत्रण है, कर्म को ही धर्म समझने का निर्देश है और मंगलमय भगवान में अपने को एकाकार कर देने का आत्मिक आह्वान है। वर्ण आश्रम धर्म के इस आह्वान को फिर से सुनने की आज बहुत जरूरत है। केवल परलोक को सुधारने के लिए ही नहीं वरन इस लोक को रहने योग्य बनाने के लिए भी। हिंदू सामाजिक संगठन। सामान्यतः लोग सामाजिक संगठन ढांचे और व्यवस्था को एक ही समझते हैं, परंतु समाज शास्त्रीय दृष्टि से इनमें मूलभूत अंतर है। समाज का व्यवस्थित स्वरूप ही सामाजिक संगठन है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं अपितु उनके बीच विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले संबंधों का जाल है। इसकी यह व्यापक और समाजशास्त्रीय अवधारणा है। जब यह संबंध व्यवस्थित रूप में होते हैं तो हम उस व्यवस्था को सामाजिक संगठन की संज्ञा प्रदान करते हैं। जब किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो जाती है तो हम कहने लगते हैं कि सामाजिक विघटन की स्थिति अथवा सामाजिक विघटन पैदा हो गया है। किसी समाज को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि वे अपने मान्य अथवा अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें। इस बात को ही केंद्र बिंदु मानकर इलियट और मोरिल ने सामाजिक संगठन की परिभाषा इस प्रकार की है। सामाजिक संगठन वह स्थिति अथवा दशा है जिससे किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य अथवा अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी समाज तभी व्यवस्थित हो सकता है जब उसकी विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करती रहें जिनके लिए उनकी स्थापना की गई है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्तियों के बीच संबंधों की स्थापना होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं जिन्हें पूरा कराने का उत्तरदायित्व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर होता है। प्रत्येक अपने उद्देश्यों को पूर्ति से ही व्यवस्थित होता है और उसका व्यवस्थित स्वरूप ही सामाजिक संगठन होता है। स्थिति और कार्य में संतुलन। एकमत और सामाजिक नियंत्रण सामाजिक संगठन के आधारभूत तत्व हैं। अर्थात जिस समाज में ये तत्व जितने अधिक पाए जाते हैं वह उतना ही अधिक व्यवस्थित और संगठित होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उस समाज की विभिन्न सामाजिक समस्याएं अपने निर्धारित उद्देश्यों की किस प्रकार और किस सीमा तक पूर्ति कर रही है। अन्य समाजों की तरह हिंदू समाज ने भी अपने को व्यवस्थित करने के लिए अनेक उद्देश्य निर्धारित और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना कर रखी है। ये संस्थाएं नवीन नहीं अपितु हिंदू समाज के आरंभ से हैं। विश्व के अनेक प्राचीन समाज और संस्कृतियां विनाश के क्रूर हाथों में पड़कर आज इतिहास की वस्तु रह गई है, परंतु हिंदू समाज और संस्कृति आज कई हजार वर्षों से अविरल गति से चली आ रही है। हिंदू सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए तथा हो रहे हैं, परंतु इसके मूल उद्देश्यों और आदर्शों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। उन उद्देश्यों की पूर्ति में विभिन्न हिंदू सामाजिक संस्थाएं अविरल गति से लगी हैं, जो कि अनेक कारकों के कारण इनमें परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और संगठित रखने में आज भी इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा व्यवस्थित हिंदू सामाजिक जीवन ही हिंदू सामाजिक संगठन है। निष्कर्ष, हिंदू सामाजिक संगठन का स्वरूप प्रदान करने में आश्रम एवं वर्ण जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार तथा हिंदू विवाह पद्धति आदि को महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संस्थाओं की सामाजिक अथवा समाज शास्त्रीय भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने हिंदू सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और संगठित करने में अनेक प्रकार से योगदान किया है। वर्ण धर्म, वर्ण धर्म के स्वरूप एवं स्रोत की व्याख्या। धर्म शब्द संस्कृत के धी धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ धारण करना या सुरक्षित रखना होता है। महाभारत में इसी संदर्भ में व्याख्या की गई है। उदाहरण स्वरूप वर्णन है कि धर्म सर्वभूत हित के लिए उत्पन्न है। प्रथम वार्थम च भूतानां धर्म प्रवचनम एवं, आगे स्पष्ट किया गया है कि वह जो कल्याण के लिए है वही धर्म है। या सस्यात् प्रभवम संयुक्त सह धर्म इति निश्चय। सर्वभूत कल्याण के लिए महाभारत के धर्म को अहिंसा संयुक्त कहा गया है। या सस्यात् अहिंसा संयुक्तस्य धर्म इति निश्चय। अहिंसा सार्थम च भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम। इसके बाद महाभारत में धर्म की वह लोकप्रिय परिभाषा दी गई है कि धर्म वह है जो धारण करता है तथा धर्म प्रजा की रक्षा करता है। धाराधि धर्म इत्याहुर धर्मो धारायते प्रजा या स्यात् धारण संयुक्तस्य धर्म इति निश्चय। इस प्रकार धर्म महाभारत के अनुसार यह तत्व है जो सृष्टि एवं संरक्षण का अनिवार्य साधन है। वैशेषिक सूत्रों में भी धर्म के इसी आदर्श की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि जिसमें अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि हो वही धर्म है, या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म है। किंतु इसके अतिरिक्त भी धर्म की विविध व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। इन विविध व्याख्याओं का कारण धर्म का संश्लिष्ट स्वरूप रहा है। धर्म शास्त्रों के अनुसार विद्वानों ने यद्यपि धर्म के विवेचन पर पूर्ण ध्यान दिया है, किंतु इनके तत्व इतने सूक्ष्म हैं, इतनी विविधताएं हैं कि इसकी सर्वसंभव व्याख्याएं नहीं की जा सकती। जैसा कि महाभारत में कहा गया है कि महाराज धर्म बड़ा सूक्ष्म है, अतः हम मानो इसकी गतियों को समझ नहीं सकते। सूक्ष्मो धर्मो महाराजाय नास्यम विद्वम गतिम वयम। महाभारत में आगे कहा गया है कि धर्म इतना सूक्ष्म है कि श्रुति भी भिन्न भिन्न व्याख्याएं करते हैं। ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसके मत को प्रमाण माना जाए। तर्क प्रतिष्ठित धर्म के तत्व बड़े गुहा हैं, अतः सामान्य जनों को महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। तर्क प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न एको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जो मन वचन कर्म से दूसरे के कल्याण में लगा हुआ है उसने ही धर्म को समझा है, ऐसा कहा जा सकता है। महाभारत में राजर्षि भीष्म ने स्पष्ट किया है कि देश एवं काल के प्रभाव से धर्म अधर्म एवं अधर्म धर्म बन जाता है, किंतु देश एवं काल के संभाव्य प्रवाह जन सम्मान को ज्ञात नहीं, अतः धर्म शास्त्री धर्म का कोई सामान्यीकरण नहीं करना चाहता, वरन देश एवं काल के प्रवाह को स्वीकार करते हुए वह स्वीकार करता है कि धर्म के द्वारा मानव आचार एवं व्यवहार के दिशा निर्देश की प्रक्रिया रूढ़ एवं अस्थायी नहीं है, वरन इनमें परिवर्तनशीलता एवं लोचकता अपेक्षित है। अतः मनुष्य को इस परिवर्तन के प्रति सर्वदा तैयार रहना चाहिए। यह मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता। इस धर्म की प्रक्रिया एवं परिवर्तित स्वरूप को हम भारतीय साहित्य एवं परंपरा में भी देख सकते हैं। ऋग्वेद में जो धर्म का स्वरूप था वह उत्तर वैदिक काल में नहीं रह गया। उत्तर वैदिक कर्म कांड उपनिषदों के ज्ञान कांड में परिवर्तित हो गया। ऋग्वेद में यज्ञ ही आर्यों का श्रेय एवं प्रेय था, जबकि उपनिषदों में आत्मचिंतन अंतिम उद्देश्य रहा। यह गृह सूत्रों में वर्ण एवं आश्रम धर्म की प्रधानता हुई तो स्मृतियों एवं पुराणों में व्रत दान या तीर्थ यात्रा जैसे नवीन विषयों या आचारों का समावेश किया गया। तात्पर्य यह है कि धर्म देश एवं काल के साथ परिवर्तित होता गया। कभी वह लौकिक अभ्युदय का साधन था तो कभी अलौकिक श्रेय का। दृश्य पुत्र एवं वित्त प्रदान करता था तो कभी अदृश्य स्वर्ग अपवर्ग एवं मोक्ष का सोपान था। धर्म के स्रोत। सभी प्राचीन संस्कृतियों में धर्म विधि देवी स्रोत से निषिद्ध स्वीकार किया गया है। हमूर्वी की विधि संहिता सूर्य प्रदत्त कही गई है, तो मूसा ने अपने कमांडमेंट यहोवा से प्राप्त किया है। कुरान में भी विधि को अल्लाह का लफ्ज कहा गया है, साथ ही दूसरे प्रकार के धर्म पैगंबर ने दिए हैं। इसी प्रकार भारत में भी धर्म को अपरुषेय श्रुति एवं परुषेय स्मृति पर आधारित स्वीकार किया गया है। श्रुति स्मृति विहितो धर्म है। इस प्रकार धर्म का आदि स्रोत दिव्य स्वीकार किया गया है। नंबर एक, श्रुति। ऋग्वैदिक साहित्य में व्यवस्थित विधि संहिता का अभाव है, किंतु ऋग्वेद की ऋतु की अवधारणा धर्म के निकट प्रतीत होती है। जिस प्रकार धर्म छत्र से छत्र स्वीकार किया गया है, वैसे ही मान्यता ऋत की थी, किंतु ऋत प्राकृतिक या भौतिक तत्वों का सूत्राधार था। मानव जीवन से संभवतः उसका सीधा संबंध नहीं था। कालांतर में धर्म सूत्रों में आचारों को संकलित किया गया है, जिन्हें धर्म का स्रोत स्वीकार किया जाने लगा। अतः धर्म सूत्रों में प्रथम बार विधि एवं निषेध जनित आचारों को धर्म के नाम से संग्रहित किया गया, किंतु इन धर्म सूत्रों को अपनी प्रामाणिकता के लिए दैवी श्रुति का आधार आवश्यक था। अतः इन्हीं धर्म सूत्रों के धर्म के मूल स्रोत के रूप में श्रुति की प्राथमिकता मिली एवं सभी धर्म सूत्रों में समान रूप से धर्म का आदि स्रोत श्रुति को स्वीकार किया गया। गौतम के अनुसार वेदो अखिल धर्म मूलम दादिदाम च स्मृति शील अपस्तम्भ धर्म सूत्र में धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाहश्च का उल्लेख है। महाभारत में भी वेद को प्रमाण स्वीकार किया गया है। वेदोक्त परमो धर्म धर्म शास्त्रेषु चापर। वेदों में वर्णित धर्म को परम धर्म कहा गया है, उसके बाद धर्म शास्त्रों की प्रामाणिकता रही। स्मृतियों में भी श्रुति को ही धर्म का आदि स्रोत स्वीकार किया गया है। वशिष्ठ के अनुसार श्रुति स्मृति विहितो धर्म तद अलावे शिष्टाचार प्रमाणम। मनु ने भी वेदों को धर्म का आदि स्रोत स्वीकार किया है। वेदो अखिल धर्म मूलम स्मृति शीले च दद्दिताम। याज्ञवल्क्य के अनुसार श्रुति स्मृति एवं सदाचार को धर्म का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार धर्म सूत्रों व धर्म शास्त्रों में वेद को धर्म का मूल स्रोत स्वीकार किया गया। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मात्र औपचारिकता वसी वेदों को धर्म का स्रोत स्वीकार किया गया है, अन्यथा इनमें श्रेयस एवं प्रेयस विधि एवं निषेध जनित धर्मों का उल्लेख नहीं है। किंतु इसके विपरीत काणे जैसे विद्वानों की धारणा है कि वेदों में धर्म अस्पष्ट प्रसंग है, जिनसे कुछ भी सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है। काणे ने इस संदर्भ में कतिपय श्रुति वचन उद्धृत किए हैं। उन्होंने वैदिक साहित्य से विवाह, विवाह के प्रकार, विभिन्न प्रकार के पुत्र, विभाग, दया भाग, श्राद्ध, स्त्री धन, प्रभूत विषयों से संबंधित श्रुति वचन एकत्रित किए हैं। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं निरुक्त में मातहीन कन्या से विवाह का निषेध है। संभवतः इन्हीं श्रुति वचनों के आधार पर याज्ञवल्क्य ने भ्रातिमती कन्या के विवाह को युक्ति संगत कहा। ऋग्वेद में वैवाहिक कृत्य के कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे विवाह के बाह्य प्रकार की पुष्टि होती है। विशिष्ट धर्म सूत्र में वैतराणी संहिता को उद्धृत करते हुए पति कृत पत्नी का प्रसंग है, जिससे आसुर विवाह की संपुष्टि होती है। इसी प्रकार ऋग्वेद का वह उद्धरण की सुंदर व सजी संवरी स्त्री मनुष्यों को अपना मित्र स्वयं खोज लेती है, गंधर्व विवाह की ओर संकेत करता है। ऋग्वैदिक काल में ही औरस पुत्र के महत्व को पहचान लिया गया था। तैतरीय संहिता में दत्तक पुत्र के प्रसंग मिलते हैं। ऋग्वेद का यह प्रसंग की विधवा जिस प्रकार अपने देवर को अपने बिस्तर पर बुलाती है, जिस प्रकार कुमारी अपने प्रेमी को बुलाती है, उसी प्रकार हे अश्विन अब हम तुम्हें बुलाते हैं, क्षेत्रज पुत्र की ओर संकेत करता है। वैदिक काल में पुत्री की दया भाग से वंचित करने का विधान है, तो पिता मनु द्वारा पुत्रों में अपनी संपत्ति बांटने का अधिकार ज्ञात है। मनु पुत्रो भेदायम व्यभजत। इस प्रकार ऐसे कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे वेदों में धर्म से संबंधित विषयों की संपुष्टि होती है। इन्हीं परंपराओं के आधार पर धर्म सूत्रों ने श्रुति को धर्म का आदि स्रोत स्वीकार किया। नंबर 2 स्मृति। वेदों के अभाव में स्मृतियों को धर्म का स्रोत स्वीकार किया गया है। सामान्यतः शास्त्र या धर्म सूत्र कोटि में रखी जा सकती है। धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र स्मृति श्रुति पर आधारित है। ऋषियों ने इन्हें देव से सुनकर स्मृति बद्ध कर लिया है, अतः ये स्मृति कही जाती है, किंतु इन्हें अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। वरन प्रत्येक धर्म सूत्रों के लेखक मनु गौतम अपस्तम्भ जैसे मानव हैं। केवल इसी आधार पर इनकी प्रमाणिकता पर संदेह किया जा सकता है। जैसा कि अपस्तम्भ ने लिखा है कि धर्म सूत्रों में सभी वैदिक आधार एवं परंपराएं मिल नहीं सकती, बहुत सी विलुप्त हो चुकी हैं। आशा है कि मनु गौतम अपस्तम्भ बोधायन आदि ने किसी वैदिक स्रोत से अपने धर्म सूत्रों को संकलित किया है। इन वैदिक स्रोतों का अनुमान उत्तर वर्णित लोक प्रशस्त आधार से सिद्ध है। धर्म सूत्र लेखकों ने इन्हें न केवल संकलित एवं व्यवस्थित किया, वरन तत्कालीन समाज की धर्मगत समस्याओं पर चिंतन एवं मनन कर उस काल विशेष के परिवेश में उनका समाधान प्रस्तुत किया। अतः महाभारत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि श्रुतियों से भी व्यापक स्मृतियां हैं। वेदों के निर्देश हर युग के लिए उपयुक्त नहीं है, उनका महत्व तो केवल उनकी लोकप्रियता के कारण है। यदि वेदों को प्रमाण माना जाए तो केवल उनकी लोकप्रियता के कारण है। यदि वेदों को प्रमाण माना जाए तो स्मृतियों को भी वेदों पर आधारित होने के कारण प्रमाण मानना पड़ेगा। नंबर 3 श्रुति स्मृति परस्पर संबंध। कौटिल्य जैसे व्यवहारिक राजशास्त्री ने प्रश्न उठाया था कि यदि श्रुति स्मृति में विरोध है तो उस समय धर्म का प्रमाण किसे स्वीकार किया जाएगा। महाभारत में भी कहा गया है कि कभी कभी श्रुति एवं स्मृति में भी परस्पर विरोध देखता है। ऐसी परिस्थिति में किसे अधिक महत्व दिया जाए, किसे कम, इस संबंध में हिंदू धर्म शास्त्रियों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता। कुछ एक संदर्भ में श्रुति को तो कुछ एक में स्मृति को प्रमाणिक माना जाता है। अतः अपस्तम्भ ने संभवतः ऐसी ही परिस्थितियों में विवाद के हल के लिए धर्मज्ञ के निर्णय को प्राथमिक स्थान दिया तो वेदों को द्वितीय। धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदास्य। इस संदर्भ में जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्रों में स्पष्ट सुझाव दिया है कि जहाँ कहीं धर्म के प्रमाणों में परस्पर विरोध हो तो वेद का प्रमाण सर्वोपरि होगा। कुमारिल ने तंत्र वार्तिक में तर्क प्रस्तुत किया है कि मनु इत्यादि की स्मृतियाँ दूसरों की स्मृति पर निर्भर है और स्मृति अपने सत्य एवं प्रमाण के लिए अपने स्रोत पर निर्भर है। अतः केवल एक स्मृति का प्रमाण पर्याप्त नहीं है, जिस प्रकार की वेदों का प्रमाण होता है पर इन स्मृति वचनों की क्रमबद्ध श्रृंखला व परंपरा मिलती है जो श्रुति शीलवान प्रदत्त है, अतः उन्हें ठुकराया नहीं जा सकता। फिर भी वेदों की तुलना में उनका महत्व कम है। इतिहासकारों ने मीमांसा के उत्सर्ग अपवाद विधि, सामान्य विशेष विधि, सावकाश व निरावकाश विधि, अर्थवाद एवं विकल्प का सुझाव दिया। स्मरणीय है कि जहाँ अर्थवाद व विकल्प का प्रश्न उपस्थित होगा वहाँ पुनः धर्मज्ञ के निर्णय की ओर झुकना पड़ेगा। यह धर्मज्ञ ही संभवतः महाभारत का महाजन या शिष्ट है। इस प्रकार स्मृतियों में वर्णित धर्म का तीसरा स्रोत सदाचार इसी शिष्ट का आचार हो जाता है। नंबर 4 सदाचार एवं शिष्टाचार। महाभारत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था, अर्थात श्रेष्ठ जनों का आदर्श हो उन समान जनों के धर्म का साधन होगा। जो गुहा तत्त्व को समझ नहीं सकते तभी स्मृतियों में सदाचार को सर्वसम्मत धर्म का तीसरा स्रोत स्वीकार किया गया। जैसे श्रुति स्मृति विहितो धर्म है तदा अलाभे आचार प्रमाणम। मनु ने भी लिखा है कि वेदो अखिलो धर्म स्मृति मूल स्मृति शीले चा द्वादिदाम आचाराश्च साधु नाम आत्मनः तिष्ठिरेव च। याज्ञवल्क के शब्दों में श्रुति स्मृति सदाचार व प्रिय आत्मन धर्म के मूल है, अतः सभी स्मृतियों में सदाचार व शिष्टाचार को धर्म का स्रोत स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रियों ने धर्म के आदर्श एवं यथार्थ दोनों ही पक्षों को प्रस्तुत किया है। संभवतः उनकी मान्यता थी कि धर्म जितना कर्म का आधार है, इसका उतना ही दार्शनिक विचार भी होना चाहिए, क्योंकि विचार आचार के बिना व आचार विचार के बिना तत्वहीन होगा। उसी प्रकार धर्म के बिना कर्म व कर्म के बिना धर्म कत्यर्थ होगा। श्रुति एवं स्मृति धर्म के आदर्श तत्व हैं, तो सदाचार उनका यथार्थ स्वरूप है। अतः धर्म शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि श्रुति एवं स्मृति में वर्णित धर्म ही एवं स्मृति में वर्णित धर्म ही कर्म है, किंतु परिस्थितिवश इस कर्म समुच्चय का ज्ञान ना हो सके तो प्रचलित आधार को ही धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रुति स्मृति विहितो धर्म तत् अलाभे आचार प्रमाणम। धर्म शास्त्रियों की मान्यता थी कि जन सम्मान श्रुति एवं स्मृति के ज्ञान से अनभिज्ञ हो सकते हैं, पर स्थापित आचार उनको ज्ञात होंगे, क्योंकि परंपराएं मुश्किल से मरती हैं। अतः वह इन आचारों से अपने धर्म व कर्म का निर्णय कर सकता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि शिष्ट कौन है। धर्म सूत्रों में शिष्ट की अनेक व्याख्याएं की गई हैं। बौधायन के अनुसार शिष्ट वे हैं जो इच्छा द्वेष अहंकार आदि से मुक्त हैं। उन्होंने वेद एवं वेदांग का समुचित अध्ययन किया है, जो श्रुति वचनों को प्रमाण रूप में उद्धृत करने में समर्थ हैं, जिनमें काम क्रोध मोह लोभ मद मत्तर नहीं है। मनु के अनुसार शिष्ट वह है जिसने वेद एवं वेदांगों का समुचित अध्ययन किया हो। मत्स्य पुराण में उन्हें प्रलय से बधा हुआ स्वीकार किया गया है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि शिष्ट पूज्य चरित्र व्यक्ति है। मनुष्य के अनुसार ये शिष्ट हिमवत के दक्षिण, विंध्य के उत्तर, प्रयाग के पश्चिम, बाहर्षि देश आर्यावर्त व मध्य देश में निवास करते हैं। अतः इन देशों के आचार शिष्टाचार है, किंतु मनु की यह व्यवस्था पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं की जा सकती। जैसा कि मेधातिथि ने लिखा है कि कोई भूमि स्वयं में पुण्य क्षेत्र एवं पाप क्षेत्र नहीं होती, वरन वहाँ के निवासियों के आचार ही उसकी धार्मिक व अधार्मिक चरित्र को निर्धारित करता है। यदि मलेच्छ देश में कोई धर्म स्थापित हो जाता है तो वही देश यज्ञ हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रियों में श्रुति स्मृति एवं सदाचार के परस्पर संबंध की भी चर्चा है। हिंदू धर्म शास्त्र के विकास में आचार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश व काल के प्रवाह में प्राचीन धर्म जैसे प्रवाहहीन होते गए व छूटते गए, जिनका स्थान नवीन आचार ग्रहण करते गए। अतः हिंदू धर्म शास्त्रियों का सुझाव था कि यदि श्रुति एवं वचन स्मृति वचन में विरोध हो तो उसका समाधान आचार के आधार पर किया जाए। मनु का निर्देश है कि आचार वेद एवं स्मृति की तरह सनातन धर्म है, अतः द्विज को अपने अभ्युदय के लिए इनका परिपालन करना चाहिए। मनु के इस वचन पर व्याख्या करते हुए काणे ने लिखा है कि ये आचार स्वयं सिद्ध है, श्रुति युक्त या स्मृति नहीं। गौतम मनु कात्यायन इत्यादि के उद्धरण देश जनपद पुर ग्राम कुल श्रेणी इत्यादि के आचारों की संपुष्टि करते हैं। याग्वल के आचार पर भाष्य करते हुए विज्ञानेश्वर ने लिखा है कि ये जन समुदाय के यथार्थ आचार हैं। तात्पर्य यह है कि मिताक्षरों में इन विविध आचारों को यथार्थ लोकाचार स्वीकार किया गया है, एवं कौटिल्य ने धर्म शास्त्र व आचार के विरोध में धर्म के अनुसार निर्णय देने का सुझाव दिया, किंतु युक्ति युक्त आचार एवं धर्म शास्त्र के विरोध में आचार ही प्रमाण स्वीकार किया जाना चाहिए। अपस्तंभ ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि जो कुछ धर्म सूत्रों में नहीं है उसे वहाँ पुरुष व नारी के आचारों से संग्रह करना चाहिए। संभवतः जब धर्म शास्त्र व आचार में दूरी होती गई, तब निबंधकारों ने अपनी प्रखर तर्क बुद्धि से प्राचीन सूत्रों की ऐसी व्याख्या की कि वे लोकप्रिय आचार के अनुरूप अभिषिप्त परिमाण देने वाले हुए। इस प्रकार कालांतर में धर्म शास्त्र पर आचार की प्रमाणिकता स्थापित हुई। नंबर 5, आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि को धर्म के स्रोत के रूप में स्थापित होना विवादास्पद है। मनु ने सर्वप्रथम आत्मतुष्टि को धर्म का श्रेष्ठ स्वीकार किया, जिसे याज्ञवल्क ने आत्मप्रिय कहा। धर्म के स्रोत के रूप में आत्मतुष्टि, धर्म के स्रोत के रूप में आत्मतुष्टि के विरुद्ध जो सबसे प्रमुख तर्क है वह यह है कि जो आत्मतुष्टि है तो उसका बाह्य प्रदर्शन कैसे, जिसका बाह्य प्रदर्शन नहीं वह धर्म का स्रोत कैसे। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि ऐसे देश व काल में जहाँ श्रुति स्मृति एवं महाजन के आदर्श उपलब्ध ना हो, वहाँ कर्ता की आत्मा को जो धर्म संतुष्ट कर पाए वही धर्म होगा। यदि कर्ता के सम्मुख विविध पद हो जिसके चयन में उसे बाधा उपस्थित होती हो, तो उसे परिस्थिति में उसे आत्मतुष्टि के अनुरूप कार्य करना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि धर्म शास्त्रियों ने आत्मतुष्टि कहा है, काम तुष्टि नहीं। आत्मतुष्टि निश्चित ही सतपथ होगा, उत्पत नहीं। आत्मतुष्टि पर भाष्य करते हुए भाष्यकार सर्वज्ञ नारायण ने लिखा है कि यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्धारित धर्म का स्रोत है, अतः यह स्मृति एवं सदाचार से हीन होगा। जहाँ लोकाचार या लोक तुष्टि उपलब्ध हो, वहाँ धर्मज्ञ समय के द्वारा जहाँ धर्म को संपुष्ट करने का साधन हो, वहाँ भी आत्मतुष्टि को गौड़ स्थान प्राप्त होगा। फिर भी यह आत्मतुष्टि किसी श्रुति तिलवान की है जो सर्वदा धर्माचरण करता है, अतः इसे धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। निष्कर्ष: इस प्रकार देश एवं काल की परिवर्तनशील परिस्थितियों के संदर्भ में धर्म के स्रोत ही परिवर्तनशील होते रहे। वर्णों की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत: प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें वर्णों के उद्भव एवं विकास का इतिहास तो मिलता है, साथ ही विभिन्न देश व कालबद्ध परिवर्तनों के प्रकाश में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो विविध आधार प्रस्तुत किए गए हैं, उनका भी ज्ञान हमें हो पाता है, जिन्हें हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर एक, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राचीन विश्व में किसी भी वस्तु या संस्था के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बड़ा ही लोकप्रिय था। हम्मुर्बी का कोड कुरान की आयतें या बाइबिल के 10 आदेश इसके उदाहरण हैं। प्राचीन भारतीय समाज और साहित्य भी उसका अपवाद ना रह सका। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विश्व की उत्पत्ति विराट पुरुष के विविध अंगों से स्वीकार किया गया है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ब्राह्मणोश्च मुखामासीद् बाहू राजान्यः कृतः उरु तदस्य अद्य वैश्या पदभ्याम सूत्रो आजायात्। अर्थात ब्राह्मण के विराट पुरुष के मुंह से क्षत्रिय को, बाहू से वैश्य को, उसके उरु प्रदेश से तो शूद्र को उसके पैर से उद्भूत स्वीकार किया गया। ऋग्वेद के अतिरिक्त महाभारत में भी उत्पत्ति का प्रसंग है। वर्णन है कि ब्रह्मा के मुख, बाहु, उरु एवं पद से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र उत्पन्न हुए। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैंने गुण एवं कर्म के विभाजन के आधार पर चतुर्वर्ण की व्यवस्था की। चतुर्वर्ण महामाया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। मनुस्मृति में भी वर्णन है कि लोक वृद्धि हेतु ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उरु एवं पद से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्माण किया। मनुस्मृति में भी पुरुष सूक्त की भावना की अभिव्यक्ति की गई है कि लोक की आय वृद्धि, श्रम वृद्धि एवं कल्याण के लिए मुख, बाहु, जंगे व पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। पुराणों में भी इसी प्रकार की कथाएं संग्रहित है। कुछ पुराण में वर्णों के विष्णु के अंगों से स्वीकार किया गया है, जैसे विष्णु एवं मत्स्य, तो कुछ में वैदिक परंपरा का अनुगमन करते हुए ब्रह्मा के ही अंगों से वर्णों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है, जैसे वायु एवं ब्रह्मांड। इस प्रकार स्वयं ईश्वर द्वारा इन वर्णों के निर्माण की कल्पना प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। इस प्रकार इस सिद्धांत का महत्व इसमें है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यह ईश्वर प्रणीत है। दूसरे इस दैवी उत्पत्ति के कारण संबंध वर्ण अपने वर्ण के निर्वाह के लिए बांधे होंगे एवं ईश्वर के भय से वर्ण धर्म का सामाजिक अवमूल्यन नहीं हो सकेगा। संभवतः ऐसा विश्वास धर्म शास्त्रियों को रहा। नंबर 2, रंग के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, अतः रंग के आधार पर भी वर्ण विभाजन का प्रयास भारतीय धर्मशास्त्रों में किया गया। उदाहरण स्वरूप ऋग्वैदिक समाज का प्रारंभिक विभाजन रंग के ही आधार पर हुआ था। गौर वर्ण आर्य कृष्ण वर्ण अनार्यों को अपने से हेय एवं घृत समझते थे। गौर वर्ण की श्रेष्ठता एवं कृष्ण वर्ण की हीनता के इसी रंग मूलक आधार पर ही परवर्ती शास्त्रियों ने रंग के आधार पर वर्ण के विभाजन की कल्पना की। उदाहरण स्वरूप महाभारत में ब्राह्मण को सित, क्षत्रिय को लोहित, वैश्य को पीत एवं शूद्र को आश्रित रंग का स्वीकार किया गया। ब्राह्मणानाम सितो वर्ण, क्षत्रियाणाम तु लोहित, वैश्यानाम पीतिको वर्ण, शूद्राणाम आश्रित तथा। कालांतर में पुराणों ने भी महाभारत के इसी वर्गीकरण का समर्थन किया, किंतु इसी समय भारत में नवीन चिंतन धारा विकसित हो रही थी। सरल दर्शनों का सूत्रपात हो रहा था, अतः कुछ दार्शनिकों ने इस रंग को त्वचा का रंग न मान उन्हें दार्शनिक आधार देने का प्रयास किया, जिसके लिए सांख्य दर्शन के प्रकृति के सत्य, रज एवं तम नामक तीन गुण रोचक आधार बने एवं कल्पना कर लिया गया कि वर्णों का वर्गीकरण त्वचा के रंग के आधार पर संभव नहीं है, जैसा कि महाभारत में कहा गया है। अतः गुण वर्ण उत्पत्ति का आधार स्वीकार किया जाने वाला इस प्रकार का गुण सिद्धांत प्रकाश में आया। नंबर तीन, गुण के आधार पर विभाजन। सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति नामक दो तत्वों की कल्पना की गई है। प्रकृति के तीन गुण सत्य, रज एवं तम स्वीकार किए गए हैं। प्रकृति जब पुरुष के संयोग में आती है या संयोगाभास का अनुभव करती है तो उसके गुणों का संतुलन भंग होता है एवं सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सृष्टि की इस प्रक्रिया एवं अन्य तत्वों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भी उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन के इस सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार ब्राह्मण में सात गुण की प्रधानता होती है, क्षत्रिय में रज गुण की प्रधानता, ब्राह्मण में सत्य गुण की प्रधानता होती है, क्षत्रिय में रज गुण की प्रधानता होती है, इसी प्रकार वैश्य में रज एवं तम गुण सर्वोपरि होता है तो शूद्र में तम गुण की प्रधानता होती है। सत्वाधिको ब्राह्मणा स्यात् क्षत्रिय अस्तु, रजोधिको तमोधिको भवेत वैश्य, गुण साम्यम तुम तु शूद्राग्। इसी प्रकार गीता में कृष्ण ने कहा, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात मैंने गुण एवं कर्म के आधार पर चारों वर्णों को उत्पन्न किया। इस प्रकार गीता एवं पुराणों एवं मनुस्मृति में भी सत्य, रज, तम का विशद विवेचन है। मनु के अनुसार सत्य गुण ज्ञान, रज गुण राग द्वेष, तम गुण अज्ञान संपन्न है। वेदा अध्ययन में तप, ज्ञान, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि सात्विक जनों ब्राह्मणों का लक्षण है। युद्ध कर्म एवं देह धर्म की ओर सतत आकर्षण रजोगुणी जनों क्षत्रिय के लक्षण है एवं मोह युक्त विषय की ओर आकर्षित होने वाले तमोगुणी जन वैश्य कहे जाते हैं। नीलकंठ ने महाभारत में भी इसी मत का समर्थन किया है। नंबर चार, धर्म एवं कर्म के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति। गुणों से जुड़ा हुआ धर्म उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत कर्म एवं धर्म का है। प्रारंभिक वैदिक समाज में भी आचार मूलक एवं कर्म मूलक भेद विद्यमान थे। आर्यों ने अनार्यों को अकृतु अयज्ञीय कहा था, इस प्रकार उन्होंने अपना अनार्यों से आचार मूल के आधार पर ही अंतर स्पष्ट किया था। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाया जाए, किष्लवंतो विश्वम आर्यम, अर्थात ऋग्वैदिक युग में भी यह भावना विद्यमान थी कि लोगों को आर्य बनाया जा सकता है। आर्य बनाने की यह प्रक्रिया निश्चित ही कर्म पर आधारित होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वित्तियां व्यक्ति विशेष के लिए प्रधान होती गई एवं उन वित्तियों के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता गया। कालांतर में इन्हीं वृत्तियों या कर्मों का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर दिया गया और उन्हें धर्म सम्मत नाम दिया जाने लगा। इन धर्मों कर्मों के आधार ही कर्मफल की अवधारणा पनपने लगी, वर्तमान जीवन एवं पूर्व कार्य का प्रमाण माना जाने लगा। इस भावना को छंदोग्य उपनिषद में व्यक्त किया गया है कि शुभ कार्य के शुभ योनि की प्राप्ति होती है, जैसा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या अशुभ कर्म से स्वपच या चंडाल योनि प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में वर्णन है कि पहले सभी ब्राह्मण थे, पर क्रमशः कर्म द्वारा धर्मचित होकर विभिन्न वर्ण उत्पन्न हो गए। वे ब्राह्मण जो सत्य धर्म और सदाचार का परिपालन करते रहे, अपना ब्राह्मणत्व बनाए रखे, जो ब्राह्मण धर्म से च्युत हुए, काम भोग प्रेम बोध सत्व जनित साहसिक कार्यों में प्रयुक्त हुए, वे क्षत्रिय कहलाए। जो ब्राह्मण धर्म से च्युत हो, वार्ता कृषि पशु पालन में लिप्त हुए, वे वैश्य कहलाए। जिनमें हिंसक वृत्तियों का विकास हुआ, आखेट मत्स्य पकड़ने जैसी वृत्तियों में जिनकी रुचि बढ़ी, जो अशुभ एवं अपवित्र कर्मों के प्रति आसन्न हुए एवं इन केन प्रकार अपनी जीविका का निर्वाह करने लगे, वे शूद्र कहलाए। सच पूछा जाए तो गुण के आधार पर वर्ण का निर्धारण ही वर्ण व्यवस्था का आधार बना, जैसा कि एक धर्म शास्त्री ने कहा है कि मनुष्य के शुभ व अशुभ कर्मों का ही फल है कि शूद्र ब्राह्मण हो सकता है तो वैश्य क्षत्रिय बन सकता है। एभी अस्तु कर्म विधर्वे शुभे राचित चरित अस्थता शूद्र ब्राह्मणो याति वैश्य क्षत्रियताम व्रजेत। मनु ने भी कहा है कि शूद्र कन्या के गर्भ से उत्पन्न बालक अपने कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण बनता है। शूद्रानाम ब्राह्मणा जात श्रेयस चित प्रजायते। धर्म शास्त्रियों ने वर्ण धर्म के समर्थन में जोर देकर कहा है कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन इसलिए करता है कि उसमें प्रकाशपूर्ण सत्गुण की प्रधानता है। क्षत्रिय सैन्य संचालन एवं देश रक्षा इसलिए करता है कि उसमें रजगुण जनित साहस एवं शक्ति की प्रधानता है। वैश्य वार्ता एवं कृषि इसलिए करता है कि उसमें रज एवं तम जनित श्रम की प्रधानता है। शुद्ध को सेवा कर्म इसलिए निश्चित किया गया कि उसमें तम या अज्ञान की प्रधानता है। धर्म सूत्रों में वर्ण निर्णय में कर्म को महत्व का प्रतिपादन किया गया। अपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि अशुभ कर्मों से मनुष्य निम्न योनि यहाँ तक कि पशु योनियों को प्राप्त होता है। यदि कोई ब्राह्मण ही स्वर्ण चोरी करता है तो ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल क्षत्रिय होते हुए भी स्वपच वैश्य होते हुए भी वर्ण योनि ग्रहण करता है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि सत्य कर्मों के फल एवं पुण्य के प्रताप से व्यक्ति उत्तम योनि एवं दुष्ट कर्मों के पाप से वह हीन योनि प्राप्त करता है। महाभारत में भी कर्म के महत्व को प्रतिपादित करते हुए धर्म व्यास कहता है कि मैं धर्म पूर्वक अपने कर्म मांस विक्रय का संपादन करता हूँ, यही मेरे मोक्ष का एकमात्र साधन है। पूर्व जन्म के मेरे कर्म इस जन्म के कर्मों के कारक हैं और इस जन्म के कर्म हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। मनु ने जब जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं पर संस्कार द्वारा सभी द्विज बनते हैं का प्रतिपादन किया, तो उनकी दृष्टि में कर्म का ही महत्व था, क्योंकि सदकर्म उत्तम संस्कार की वृद्धि करते हैं तो दुष्कर्म व्यक्ति को संस्कार च्युत एवं परिमाण स्वरूप वर्ण च्युत करते हैं। पुराणों में भी कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है एवं यह मत व्यक्त किया गया है कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र वर्णों में लोगों की उत्पत्ति होती है। नंबर 5, जन्म से वर्णों की उत्पत्ति। यह तो सत्य है कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जन्मना निर्धारित नहीं होती थी, पर धर्म सूत्रों के समय जब वर्ण रूढ़ हो गए, उनका परस्पर संबंध सीमित हुआ, फिर कर्म के आदि के स्थान पर जन्म ही वर्णों का निर्धारक तत्व होने लगा। अपस्तंभ अस्पष्ट शब्दों में कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र में प्रत्येक पुरुष का अपने परवर्ती से जन्म के कारण ही श्रेष्ठ होता है। चत्वारो वर्णो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा तेषां पूर्वः पूर्वोजन्मना पूर्वोजन्मतः श्रेयान। इस प्रकार जन्म के आधार पर वर्ण की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, यद्यपि यह सिद्धांत रूप में प्रथम बार धर्म सूत्रों में उद्धृत किया गया, पर संभवतः व्यवहार में इसका परिपालन बहुत पहले से होता आ रहा था। उदाहरण स्वरूप महाकाव्यों में से हमें ज्ञात है कि द्रोण धनुर्धर एवं क्षत्रिय कर्मी होने पर भी सर्वदा ब्राह्मण के रूप में ही पूजे जाते रहे। उनका पुत्र अवस्थामा महारथी होने पर भी पांडव पुत्रों की हत्या के अपराध से इसलिए मुक्त कर दिया गया कि वह आचार्य पुत्र था। परशुराम जीवन पर्यंत क्षत्रिय से संघर्ष करते रहे, पर जन्म से ब्राह्मण होने के कारण वे सदा ही ब्राह्मण बने रहे। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण पुरोहित कर्म संपन्न करने की क्षमता रखते हुए भी किसी प्रसिद्ध यज्ञ का संपादन नहीं कर सके। जीवन पर्यंत श्रेष्ठ पुरोहित वशिष्ठ से प्रतिद्वंदिता चलती रही, पर पुरोहितों ने कभी भी उनके ब्राह्मण के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें जन्म ही वर्ण का निर्धारक तत्व रहा, कर्म या धर्म क्रमशः गौण होते गए। निष्कर्ष रूप यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में देशज एवं कालज अनेक वृत्तियों का योगदान रहा। आर्यों ने अपने इस व्यवस्था के विकास के लिए कभी दैवी शक्ति का सहारा लिया, तो कभी उन्होंने त्वचा के रंगों के आधार पर इसका विभाजन करने का सोचा। पर ऐसा गलत लगता है कि रंग उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ माध्यम नहीं रहे, तब उन्होंने इनको दार्शनिक आधार देते हुए सत्य रज तम अनामक गुण के आधार पर इन वर्णों के विकास की कल्पना की। पर उनका चिंतनशील मन गुण मात्र से संतुष्ट ना रह सका, तब उन्होंने धर्म एवं कर्म के आधार को चुना। उनकी मान्यता थी कि धर्म एवं कर्म का निर्वाह समाज के सभी व्यक्ति व्यवस्थित रूप से कर ना सके, समाज संस्कारहीन होता गया, अतः अंत में जन्म ही वर्ण निर्णय का आधार बन गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में प्रचलित है। भारतीय समाज में ब्राह्मणों की स्थिति एवं उनके विशेषाधिकार। ऋग्वैदिक साहित्य से हमें गौर वर्ण, उन्नत नासिका, व्रतवान, कृतवान, आर तो कृष्ण वर्ण, चिविड़ नाश, अनाश, अव्रत, अकृतु, मृद्धवाच, कृष्ण देवा, अनार्यों का उल्लेख है। ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी शब्द मिलते हैं, पर उनसे ब्राह्मण वर्ण का बोध नहीं होता। कुछ इतिहासकारों ने ब्रह्मा पुत्र के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद काल में ही जन्मना ब्राह्मण होने लगे थे, किंतु संबंधित ऋचा में कहा गया है कि तुम साम गान उद्गात की तरह करते हो, अतः ब्रह्मा पुत्र हो। सायण ने इस पर भाष्य करते हुए इसे ऋत्विज कहा। ऋग्वेद की एक ऋचा में ब्राह्मण को सोम पान कर मंत्र उच्चारण करते हुए ब्रह्मा बनाने का प्रसंग है। ब्राह्मण सा सोमिनो वाचम कृतः ब्रह्मा कृष्णवंतः। दूसरी ऋचा में सोम को ब्राह्मण में प्रवेश करने की बात कही है, तो तीसरी ऋचा में ब्राह्मण की स्तुति पितरों के साथ की गई है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि सोमपायी उद्गात एवं ऋत्विज के रूप में ब्राह्मण प्रतिष्ठित अवश्य था, किंतु जन्म अभी ब्राह्मणत्व का आधार नहीं हुआ था। उदाहरण स्वरूप वशिष्ठ ब्राह्मण कहे गए, पर वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनकी माँ उर्वशी तथा पिता एवं मित्र वरुण थे। इसी प्रकार ब्रह्मा वेदानाम, ब्रह्मा देवानाम, विप्रानाम आदि प्रसंग भी जन्मना ब्राह्मण की ओर संकेत नहीं करते। ब्रह्मा चासी गृहपति में भी ब्रह्मा गृहपति है, ब्रह्मा गृहपति नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा जाया ब्राह्मण पत्नी के लिए नहीं, वरन बृहस्पति पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को सोमपायी कहा गया है, तो क्षत्रिय को ने ग्रोध एवं उदम्बुर के फल एवं मूल को ग्रहण करने का विधान किया गया। अतः स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण अपनी सोमपायी प्रकृति के कारण शेष समाज से विशिष्ट होता जा रहा था। खान पान, विवाह, उत्सव आदि की समानता होते हुए भी वे अपनी अलग पहचान प्रारंभ से ही बनाने लगे थे। जन्मना ब्राह्मण वर्ण ऋग्वैदिक समाज में स्थापित हुआ था या नहीं, यह विवाद का विषय है, किंतु कीथ जैसे विद्वान मानते थे कि ऋग्वेद में जन्मना ब्राह्मण ज्ञात थे। जहाँ तक भोजन व विवाह की बात है, तो धर्म सूत्रों ने भी ब्राह्मण को शेष द्विजातियों की पत्नी व पकवान ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया है, किंतु ऋग्वैदिक साहित्यों में जन्मना ब्राह्मणों की स्थिति का समर्थन निर्विवाद रूप से नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद में ब्रह्मा एक शब्द स्तुति या ऋचा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, जैसे विश्वामित्र का, यह ब्रह्मा भरत जनों की रक्षा करता है, विश्वामित्र रक्षति ब्रह्मोदम भारत जनम। किंतु अथर्ववेद में ब्रह्मा एवं क्षत्र का प्रयोग ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के अर्थ में हुआ। तैतरीय ब्राह्मण में ब्रह्मा से ब्राह्मण एवं क्षत्र से राजन्य ऐसा स्पष्ट किया गया। ब्रह्मा वे ब्राह्मण क्षत्रम राजन्य, अतः स्पष्ट है कि संभवतः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वृत्तियां थी। ऋग्वेद में इनका वर्ण स्वरूप स्पष्ट नहीं था। एक ही परिवार में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों ही हो सकते हैं, जैसा कि दृष्टसेन के पुत्र शांतनु एवं देवापि की कथा से स्पष्ट है। ऋग्वेद ही ऋचा की मैं कारु हूँ, कारुरहम, मेरे पिता वैद्य हैं एवं मेरी माँ आटा पीसती है। हम विविध कर्मों से धन प्राप्त करना चाहते हैं। जन्मना वर्ण की पुष्टि नहीं करती, अतः ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण वृत्ति थी, वर्ण नहीं था। वह कर्म से ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मणत्व निर्धारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। नंबर एक, उत्तर वैदिक युग। ऋग्वैदिक वर्ग ही उत्तर वैदिक काल में वर्ण में परिवर्तित होने लगा। उत्तर वैदिक साहित्य में आर्यदास या द्विधीय वर्ग विरोध के प्रकरण सहसा विलुप्त हो जाते हैं और उनका स्थान चारों वर्णों के उदाहरण लेने लगते हैं। अंतरजातीय विवाह सांस्कृतिक समिश्रण से संस्कृति के विलोप का भय उत्पन्न हुआ। अतः पृथकता की नीति अपनाने के लिए ब्राह्मण की प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण को क्रमशः देवत्व प्रदान किया जाने लगा। उदाहरण स्वरूप तैतरीय संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण वे देवता हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, अतः वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा, इति वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा। आगे कहा गया है कि देवता दो प्रकार के हैं, एक देव है तो दूसरे ब्राह्मण है जो वेद विद होने के कारण मानव देव है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण सर्व देवों में आर्य देव है, मुख ही उसका वीर है क्योंकि वह मुख से उत्पन्न हुआ है। वरुण एक स्थान पर कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से प्रथम है, ब्रह्मा ही पूर्वे क्षत्रात्। सतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण के चार गुणों ब्राह्मण्य, प्रतिरूपचर्या, यश एवं लोकपक्ति है। लोकपक्ति का अर्थ अध्ययन से है, अतः स्पष्ट किया गया है कि उसके लोकपत्ति कार्य के बदले जन साधारण उसे अर्चा दान अजेयता एवं अबद्धता से अलंकित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि सतपथ ब्राह्मण की रचना के समय तक लोकपक्ति या अध्यापन ब्राह्मण का वर्ण धर्म निर्धारित हो चुका था। यह परंपरा इतनी पुष्ट हो चुकी थी कि जब गार्ग्य राजा अज्ञात शत्रु के पास ब्रह्मा ज्ञान के निमित्त पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य धर्म के विपरीत है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से शिक्षा ग्रहण करे। फिर भी इसी युग में ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिद्वंद्वता का उदय हुआ, जैसा कि राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रों उच्चार करता है कि विश्व के तुम राजा हो, हम ब्राह्मणों के राजा सोम है। स्वयं इसी प्रतिद्वंद्वता को देवयानी व्यक्त करती है जब वह कहती है कि उसकी पुत्री हूँ जो सिंहासन पर बैठता है, स्तुति सुनता है, दान देता है। तुम उसकी पुत्री हो जो नीचे खड़ा होता है, स्तुति करता है, दान लेता है। ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में ब्रह्मा विद्या विषयक प्रतिद्वंद्वता स्पष्ट है। उदाहरण स्वरूप याज्ञवल्क राजा जनक के गार्ग काशी राज अजात शत्रु के श्वेत केतु प्रवाहण जैवली के एवं ब्राह्मण अश्वपति केकई के शिष्य कहे गए। अतः विद्या के क्षेत्र में क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने लगे थे। नंबर दो, वेदा अध्ययन। विद्या सूक्त पर निरुक्त में भाष्य है कि विद्या ब्राह्मण के यहाँ आई और उससे निधि के रूप में रक्षा करने की प्रार्थना की। पतंजलि ने महाभाष्य में एक आगत एवं श्रुति वचन को उद्धृत करते हुए कहा है कि ब्राह्मण को बिना किसी धार्मिक काल से वेद एवं उनके षडांगों का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडांगो वेदा अध्ययनो ज्ञेयश्च। धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में भी वेदा अध्ययन ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य माना गया। याज्ञवल्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण वेदों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है, अतः वेदा अध्ययन ब्राह्मण का विशेषाधिकार होता गया। संभवतः ब्राह्मण पिता ही अपने पुत्र को वेद की शिक्षा प्रदान करता था, जैसा कि श्वेत केतु की कथा से स्पष्ट है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि देव मानव व पशु सभी ने पिता प्रजापति से ब्रह्मचर्य प्राप्त किया। ऋग्वेद से स्पष्ट है कि शिक्षा क्षेत्र शिक्षा सूत्र परंपरा द्वारा होती थी। इस प्रकार ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षित करता था कि इस प्रकार अध्ययन एवं अध्यापन ब्राह्मण का विशेषाधिकार होता गया। नंबर 3 पौरोहित्य। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का जो दूसरा विशेषाधिकार विकसित हुआ वह पौरोहित्य था। यद्यपि अति प्राचीन काल में पौरोहित्य किसी वर्ण विशेष का विशिष्ट धर्म नहीं था, क्षत्रिय भी पुरोहित हो सकते थे, जैसा कि देवापि विशिष्ट पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जो होति एवं उद्गाति एवं ऋतिज के रूप में शेष ब्राह्मणों से पृथक होने लगे थे। इस युग में यज्ञ साहित्य का विकास हुआ जो क्रमशः ब्राह्मणों के अधीन होता गया। यद्यपि यज्ञ करने वाले अन्य लोग भी इसी युग में थे, किंतु उन्हें तब पुरोहित कहकर अपमानित करने का प्रयास किया गया। नवा पुरोहिता से देवा अन्य अदंती। बिना किसी योग्य पुरोहित के यज्ञ संबंधी शिक्षा असंभव थी, अतः पुरोहित क्रम से ब्राह्मणेतर समुदाय के लिए दुर्लभ वस्तु होती गई। ब्राह्मणों ने अन्य वर्णों को पुरोहित के शिक्षा का निषेध करने के लिए गोत्र एवं प्रवर जैसी संस्थाओं का विकास किया एवं सुप्त काल तक यह निश्चय कर दिया कि ऐसा व्यक्ति पुरोहित नहीं कर सकता जो ऋषियों के 3 पीढ़ियों का या 10 पीढ़ियों से संबंधित न हो। इसके साथ ही यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि यजमान एवं पुरोहित दोनों के लिए घातक हो सकती थी, अतः धर्म भीरु समाज वंशानुगत पुरोहितों से ही यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए विवश हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि यज्ञ में हल्की त्रुटि रह जाने के कारण एक पुरोहित का हाथ टूट गया। इसी ब्राह्मण में कहा गया है कि आषाढ़ी मते नामक पुरोहित चूंकि यज्ञ को ठीक से संपन्न न कर सका, अतः मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन परिस्थितियों में पुरोहित ब्राह्मणों का एकाधिकार होता गया एवं यज्ञों की बढ़ती हुई आवश्यकता उत्तर वैदिक समाज में ब्राह्मणों की स्थिति दृढ़ करने में सहायक हुई। यद्यपि कुछ ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जिनमें ज्ञान ब्राह्मणत्व का निर्णायक तत्व होता है, जैसे ब्राह्मण के माता पिता के विषय में क्या पूछते हो जो श्रुतिवान है उसे ही ब्राह्मण का पिता पितामह समझो, सुत चेद अस्मिन वेदम सह पिता सह पितामह, किंतु इससे समाज का चित्र नहीं वरन अपवाद प्रस्तुत होता है। कुछ क्षत्रियों ने ब्रह्मा ज्ञान में जनक विशिष्टता अवश्य प्राप्त कर ली थी, पर उन्हें ब्राह्मणत्व नहीं मिला था क्योंकि उनसे शास्त्रार्थ करने को उद्धत ब्राह्मणों का यह तर्क कि हम ब्राह्मण हैं, जनक क्षत्रिय हैं, यदि हम जीतते हैं तो किससे कहेंगे, यदि पराजित हुए तो सभी कहेंगे कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को पराजित किया, स्पष्ट करता है कि ज्ञान नहीं वरन जन ब्राह्मण तत्व का निर्धारक तत्व हो चुका था। इसी से मिलता जुलता सनु सेठ की कथा का प्रसंग है, सुन सेठ की कथा का प्रसंग है। हरिश्चंद्र के पुत्र के बदले जब ब्राह्मण सुन सेठ के बलि की व्यवस्था हुई, तब वरुण ने जैसे संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चय ही एक क्षत्रिय से ब्राह्मण अधिक उपयुक्त है। अल्प आयु सुन सेठ के पौरोहित्य या विद्वता का कोई प्रमाण नहीं है, निश्चय ही वह जन्म के कारण श्रेष्ठ माना गया था, अतः ब्राह्मण या ब्राह्मण की पवित्रता उत्तर वैदिक काल में ही वंशानुगत हो चुकी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण होना गौरव की बात कही गई है। नंबर 4 सामाजिक श्रेष्ठता। ब्राह्मणों ने इस युग में सामाजिक श्रेष्ठता व विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी प्रयास किया। अथर्ववेद में यह कथन है कि एक स्त्री के 10 अब्राह्मण पति हो और 11वां ब्राह्मण पति हो तो वही उसका वास्तविक पति होगा, अन्य नहीं। अथर्ववेद में ही कहा गया है कि ब्राह्मण के गाय को कोई खा नहीं सकता। यज्ञ की अवशिष्ट सामग्री केवल ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकता था, अन्य नहीं। इन उद्धरणों से ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता स्पष्ट है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वही राजा सुखी होता है जो ब्राह्मणों का आदर करता है। तैतरीय आरण्यक में कहा गया है कि उसमें समस्त देवता निवास करते हैं। तैतरीय संहिता में इससे आगे बढ़कर ब्राह्मण को प्रत्यक्ष देवता मान लिया गया, पुरोहित के रूप में भी उसकी श्रेष्ठता स्थापित की गई। ऐतरीय ब्राह्मण में राजा के लिए पुरोहित रखना अनिवार्य कहा गया। दूसरे स्थान पर पुरोहित विहीन राजा के अन्न ग्रहण करने का निषेध किया गया, जहाँ तक कि देवताओं एवं असुरों को भी पुरोहित की बात कही गई। यज्ञों में दान के लिए सर्वोत्तम पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गई। ब्राह्मणों ने राज्य सत्ता के प्रभाव से मुक्त होने का सर्वाधिक प्रयास किया। राज्याभिषेक के अवसर का यह उद्धरण की विश्व का राजा यह व्यक्ति है किंतु हम ब्राह्मणों का राजा सोम है, इस प्रकार वे अपने को राज नियंत्रण से मुक्त मानने लगे थे। यहाँ तक कि जब राजा कोई भूमि दान देता था तो भी कहा गया कि ब्राह्मणों की संपत्ति उसमें शामिल नहीं हो सकती। केवल मूर्ख पुरोहित को छोड़कर राजा किसी को भी दंड नहीं दे सकता। तैतरीय संहिता में कहा गया है कि राजा के पास एक ही विवाद लेकर यदि ब्राह्मण व अब्राह्मण साथ पहुँचे तो राजा को पहले ब्राह्मण, ऐसा करके राजा स्वयं आदर पाता था। संभवतः यही व्यवस्था आगे चलकर ब्राह्मणों के वैधानिक विशेषाधिकार में सहायक हुई। अंत में हम कह सकते हैं कि यद्यपि ब्राह्मण अपने विशेषाधिकार के प्रति सजग था तो भी वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी सतत प्रयत्नशील था। उसने सामाजिक आदर्श माना जाता था, वह समाज का महाजन था जिसका आदर्श अनुकरणीय था। उसे शुद्ध उच्चारण, वेदा अध्ययन एवं सदाचार अनिवार्य कहा गया था। सदयता भद्रता उसके गुण थे, वह आचार्य एवं पुरोहित के रूप में समाज में पूजनीय था। नंबर 5, सूत्रकालीन अवस्था। धर्म सूत्रों में वर्ण व्यवस्था के अनुवांशिक सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया, अतः ब्राह्मणत्व का निर्धारण अब पूर्ण रूपेण जन्म के आधार पर होने लगा। दूसरे उत्तर वैदिक समाज की सामाजिक श्रेष्ठता वेदा अध्ययन एवं पौरोहित कर्म अब ब्राह्मण का अनुवांशिक एकाधिकार स्थापित हुआ। इसके साथ ही उनका दान व दक्षिणा ग्रहण करने का भी एकाधिकार स्थापित होने लगा। इसके साथ ही धर्म सूत्रों में ब्राह्मण के वैधानिक विशेषाधिकारों में वृद्धि होने लगी। सभी धर्म सूत्रों ने धर्म सम्मत से ब्राह्मण को अवैध घोषित किया। यहाँ तक कि हत्या के अपराध में भी ब्राह्मण को केवल निर्वासन की सजा दी जा सकती थी। यदि ब्राह्मण ने ब्राह्मण की हत्या की हो तो उसको केवल ललाट पर जाकर छोड़ देने का विधान था। चोरी, व्यभिचार, प्रभित्व, साहस जनित अन्य अपराधों में भी ब्राह्मण को शारीरिक दंड का विधान ही था। यदि ब्राह्मण ने निम्न वर्ण की हत्या कर दी हो तो उसे मात्र अर्थदंड देना पड़ता था। इस अर्थदंड को वेद निर्यातन कहा जाता था। सामान्यतः ब्राह्मण दंड मुक्त समझा जाता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण धर्म के ऊपर था। ब्राह्मणों के मृत्यु दंड से मुक्ति की प्रक्रिया वैदिक काल से प्रारंभ हुई। सामान्यतः मान्यता यह थी कि ब्राह्मण के अपराध करने की संभावना कम है। इस प्रकार ब्राह्मण कर्म से अर्थ देव एवं भूत देव होता जा रहा था। इसकी यह स्थिति अशोक के समय में राजा के ध्यान को आकर्षित कर सके एवं उसके अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने प्रशासन में दंड समता के लिए भरपूर प्रयास किया। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज में ब्राह्मण की स्थिति क्रमशः दृढ़ होती गई, उन्हें कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त होते और कालांतर में भी अर्धदेव एवं भूदेव हो गए। प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति। प्राचीन भारतीय समाज गुण एवं श्रम के आधार पर वर्ण एवं आश्रम नामक दो संस्थाओं में विभक्त था। आश्रम के माध्यम से जहाँ व्यक्ति के जीवन का नियंत्रण एवं निर्देशन होता था तो वर्ण के माध्यम से सामाजिक जीवन व्यवस्थित किया जाता था। समाज में चार वर्णों की कल्पना थी, वे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। सामान्यतः ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो शूद्र को समाज का सबसे निचला अंग स्वीकार किया जाता था। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई एवं भारतीय समाज में उनकी स्थिति क्या थी। नंबर 1, उत्पत्ति। ऋग्वैदिक साहित्य में शूद्र शब्द नहीं मिलता किंतु ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण बाहु से राजन्य जंघा से वैश्य एवं पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। वैदिक साहित्य के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पुरुष सूक्त की रचना ऋग्वैदिक काल की नहीं है, वरन उसे उत्तर वैदिक काल में कभी रचा गया एवं ऋग्वेद प्रक्षिप्त कर दिया गया। अथर्ववेद के एक आख्यान में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अतः अधिकांश विद्वानों की धारणा है कि संभवतः उत्तर वैदिक समाज में शूद्र ज्ञात थे। शूद्र शब्द की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः वादरायण ने सर्वप्रथम वेदांत सूत्र में उल्लेख किया है। उन्होंने शूद्र शब्द का अर्थ स्वर्ग को प्राप्त हुआ किया है। पुराणों में भी संभवतः इसी ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि वह जो शोकाकुल होकर इधर उधर दौड़ता है, निर्बल व निस्तेज है, वही शूद्र है। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में भी शूद्र नाम पढ़ने का कारण शूद्रों का क्षुद्र आचरण कहा गया है। इन व्याख्याओं से अस्पष्ट है कि इनमें शूद्रों की उत्पत्ति नहीं वरन उनकी समाज में अच्छा स्थिति की ओर संकेत करते हैं। नंबर 2, शूद्रों की उत्पत्ति कारण। विद्वानों ने भारतीय समाज एवं साहित्य के विश्लेषण के आधार पर समाज में शूद्रों की उत्पत्ति के कतिपय कारणों को ढूंढ निकाला है। लुडवीक ने सुझाव दिया है कि संभवतः शूद्र की किसी आर्य विरोधी जन का नाम था जिसे आर्यों ने पराजित किया। कालांतर में सभी पराजित जन अपने समान स्थिति धर्म एवं कर्म के कारण किसी शूद्र नाम से विख्यात हुए। लुडवीक के इस कथन की पुष्टि भारतीय एवं यूनानी साहित्य से भी होती है। महाभारत में पराजित जन समुदाय की सूची में आभीर एवं शूद्रों का उल्लेख है। यूनानी साहित्यकारों ने भी सुडाई, सोगडाई एवं सीड्रोई का उल्लेख किया है। उन्हें शूद्र कहा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि जिन दासों व जन समुदायों को आर्यों ने पराजित किया उसके एक शक्तिशाली वर्ग का नाम भी शूद्र था। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शूद्र वर्ण में केवल अनार्य दास एवं पराजित जन समुदाय ही था, वरन ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत से आर्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अपनी पूर्व स्थिति से पतित हुए एवं पतन की इस प्रक्रिया ने उन्हें समाज में शूद्र की स्थिति में ला दिया। उदाहरण स्वरूप, व्यवसायिक समानता के कारण बहुत से आर्य क्रमशः शूद्र हो गए। बहुतों ने विहित वर्ण धर्म एवं कर्म का यथोचित संपादन नहीं किया। इस प्रकार संस्कारहीन होने के कारण भी वे शूद्र मान लिए गए। मनुस्मृति के अनुसार वे सभी वार्त्य एवं मल्लेच्छ जो अपने वर्ण धर्म से पतित हुए वे शूद्र वर्ण को प्राप्त हुए, क्योंकि उनके अनुसार पंचम वर्ण का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अनुलोम व प्रतिलोम विवाह से चंडाल, निषाद, आभीर एवं पुक्कुस आदि जातियां शूद्र है। उन्होंने संपूर्ण संकर जातियों को शूद्र कहा है। कुछ जातियां अपनी जीवन पद्धति के कारण शूद्र बन गई। उदाहरण स्वरूप, चंडाल, स्वपच इत्यादि को उनके आहार विहार के कारण समाज बहिष्कृत कर दिया गया। मनु ने उन्हें ग्राम के बाहर निवास बहिर्ग्राम करने वाला स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्हें अस्पृश्य मानते हुए भी उन्हें शूद्र स्वीकार किया गया। इनके अतिरिक्त भी वित्तीय व्यवसाय, चारित्रिक पतन इत्यादि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे भी शूद्रों की उत्पत्ति में सहायता मिली होगी। नवर्ती समाज में शूद्रों की स्थिति। भारतीय समाज में अन्य वर्णों की तुलना में शूद्रों को अत्यंत हे एवं घृत स्थान प्राप्त था। उनकी यह हीन अवस्था उत्तर वैदिक युग से प्रारंभ होती है। नंबर 4, उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक साहित्य के विश्लेषण से उनकी हीन स्थिति के धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, राजसी यज्ञ में शूद्रों को अन्य से कामोत्थाप्य और यथा कामवध कहा गया है। इन शब्दों की व्याख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इनका अर्थ सामान्यतः दूसरे द्वारा भोजा जाने वाला एवं इच्छा अनुसार पीटा जाने वाला किया गया है। तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक समाज में शेष वर्ण शूद्र को किसी भी काम के लिए कहीं भी भेज सकते थे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कहीं से उठा ला सकते थे एवं उनकी गलती पर उन्हें मनमाना पीट सकते थे। इस वर्णन से समाज में उनकी स्थिति का आभास मिलता है। वह समाज का अंग अवश्य था, किंतु उसे धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया था, यहाँ तक कि वे यज्ञ अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते थे। राजसी यज्ञशाला की वे रक्षा तो कर सकते थे किंतु उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। कालांतर में तो उन्हें यज्ञ आदि पवित्र अवसरों के लिए भी अपवित्र घोषित कर दिया गया। 25 ब्राह्मण में कहा गया, शूद्रों के ना तो देवता है ना ही वह यज्ञ कर सकते हैं। कालांतर के साहित्य में शूद्रों को साफ प्रयास यज्ञ से दूर रखने का प्रयास किया गया। संभवतः कारण यह था कि यज्ञों के संश्लिष्ट स्वरूप आर्थिक जीवन की विषमता के कारण इनका संपादन व्ययपूर्ण होता जा रहा था। शूद्र उन्हें करा भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास धन नहीं था। दूसरा कारण यह था कि वे संस्कृत मंत्रों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। इन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इनके धार्मिक अधिकार समाप्त हो गए। नंबर 5, आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक समाज में शूद्रों की आर्थिक स्थिति भी अन्य वर्णों की अपेक्षा अत्यंत हीन थी। वे परिश्रम तो करते थे किंतु उसके फल का उपभोग नहीं करते थे। उसे सामान्यतः कर्मकर्ता कहा जाता था एवं उसके कर्म का उपभोग दूसरे वर्ण के लोग करते थे। वे संपन्न व्यक्तियों के समीप होते थे एवं उन्हें भूमि समेत दान दिया जा सकता था। कुछ संपन्न शूद्रों की भूमि भी रही होगी किंतु सामान्यतः उन्हें संपत्तिहीन कहा गया है। 25 ब्राह्मण शूद्रों के पास बहुत से पशु होने का उल्लेख है किंतु इनकी संख्या बहुत कम थी। उनका प्रमुख कार्य दीव जातियों की सेवा करना था। दीव जातियों का चरण प्रचारण उनका प्रमुख कार्य कहा गया है। नंबर 6, राजनीतिक स्थिति। समाज धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति की अपेक्षा शूद्रों की राजनीतिक स्थिति बेहतर थी। समाज में उनकी संख्या अधिक थी अतः उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। राजा के रत्नियों में उनका स्थान था। सारण ने तो सेनानी नामक रत्नी को भी शूद्र कहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक क्षेत्र में शूद्रों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थी। राजा के रत्नियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। संभवतः उनके इस महत्व का कारण राजनीतिक था। लंबे संघर्ष के बाद आर्यों को जब अनार्यों के साथ शांति पूर्वक रहने की आवश्यकता थी, दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिद्वंदता के कारण राजा को जन सहयोग की अपेक्षा थी, अतः उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक महत्व प्रदान किया गया। वह राजसी यज्ञ में धूत क्रीड़ा में उपस्थित होता एवं अश्वमेव यज्ञ में यश की रक्षा करता था। शूद्रों के रासायनिक कार्यों का उल्लेख अनेक स्थानों पर आया है किंतु इन यज्ञों में भी जहां अभिषेक या पवित्र अनुष्ठान का अवसर था उसे शूद्रों को प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक युग में शूद्र की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। शेष बुद्धिजीवी समाज ने अपनी सुविधा व स्वार्थ साधन के लिए शूद्र युग में उसकी स्थिति को अधम से अधतम बना दिया। नंबर 7, धर्म सूत्रों का युग। शूद्र युगीन समाज में शूद्र का स्थान और अधिक हीन हो गया। उसका कर्तव्य मात्र उच्च वर्णों की सेवा करना था। गौतम के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा प्रत्यक्ष पाद त्राण जूता आग पत्र अवशिष्ट भोजन आदि पर अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। सभी धर्म सूत्रों में द्विज वर्णों की सेवा उसका प्रमुख कर्तव्य स्वीकार किया गया। समाज में उनकी यह हीन स्थिति वैधानिक हीन स्थिति के समान थी। यह कहा जाए कि प्राचीन भारतीय विधान में शूद्र को पशुओं के समान स्वीकार किया गया था तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि बौद्धायन ने उसकी हत्या करने वालों को उसी दंड की व्यवस्था की है जो कौवे उल्लू कुत्ते के हत्यारों को दी जाती थी। हिंदू धर्म शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य वर्ण आश्रम धर्म का संरक्षण था, अतः शूद्र को अन्य वर्णों की अपेक्षा कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। सामान्यतः धर्म शास्त्रियों की अवधारणा थी कि शूद्रों की अपेक्षा अन्य वर्णों के अपराध करने की संभावना कम थी एवं यह कि उच्च वर्ण के लिए कुछ दुर्वचन ही मृत्यु के समान थे, किंतु शूद्र के लिए कोई भी दंड कठोर ना था। शूद्रों का आर्थिक अधिकार भी छीन लिया गया था। गौतम के अनुसार वह किसी प्रकार का संग्रह नहीं कर सकता था क्योंकि उसके द्वारा संग्रहित धन अंततः उसके स्वामी का ही होता था। यहाँ तक कि स्वामी की मृत्यु के चिड़ होने पर भी उसे उसकी सेवा करने का सुझाव दिया गया था। इस प्रकार वह ना तो धन संचय कर सकता था ना ही संचित धन का उपभोग कर सकता था। उसकी धार्मिक स्थिति तो और ही हीन हो चुकी थी। उसे वेदा अध्ययन का अधिकार नहीं था। गौतम ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि शूद्र ने वैदिक मंत्रों को सुन लिया हो तो उसके कर्ण रंध्रों में गला हुआ लाह भर देना चाहिए। यदि उसने मंत्र उच्चारण कर लिया हो तो उसकी जिहा काट लेनी चाहिए। अपस्तंभ धर्मसूत्र में शूद्रों के सामने वेद पाठ वर्जित किया गया, इस प्रकार वह मंत्रहीन, यज्ञहीन एवं संस्कारहीन मान लिया गया। इस प्रकार समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक अधिकारों से वंचित उसकी स्थिति क्रमशः हीन से हीनतर होती गई। नंबर 8, स्मृतियों का युग। यद्यपि धर्मसूत्रों ने समाज में शूद्र के लिए अति हीन व्यवस्था स्थिति की व्यवस्था की, किंतु स्मृतिकारों ने उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। उदाहरण स्वरूप मनु ने जीविकोपार्जन के लिए अन्य वर्णों की परिचर्या के अतिरिक्त काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, भांड शिल्प एवं चित्रकला आदि कर्मों का संपादन करने का अधिकार दिया, जो निश्चित ही समाज में उनकी परिवर्तन स्थिति का परिचायक है। यहाँ तक कि मनु ने दिव्य जातियों को भी उससे शिक्षा ग्रहण करने का निर्देश दिया है। मनु पर भाष्य करते हुए मेधातिथि ने लिखा है कि यदि चांडाल भी कहे कि यहाँ देर तक मत रुके तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मनु ने आगे कहा है कि शूद्र पूर्णतः संस्कार व धर्म विहीन नहीं है, उनके सद्गुणों का उच्च वर्ण द्वारा आदर किया जाता था। ब्राह्मणों का विशेषाधिकार। प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन के कई मुख्य पहलू थे, इनमें वर्ण व्यवस्था का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। आरंभ में जाति की उत्पत्ति जर्मना न मानकर कर्मणा मानी जाती थी, परंतु कालांतर में जाति व्यवस्था को जर्मना माना जाने लगा। इससे ब्राह्मण व शूद्र का भेद बढ़ता गया। ना जाने कितनी विचारहीन परंपराएं हिंदू समाज में फैल गईं और आपस में छुआछूत ऊंच नीच की भावना ने सामाजिक वातावरण को विषाक्त बनाकर रख दिया। जाति व्यवस्था से भारत को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ी और यह आज के युग में राष्ट्रीय एकता तथा भाईचारे के रास्ते में सबसे अधिक बाधक है। यहाँ हम प्राचीन हिंदू धर्म की कुछ मुख्य बातों पर विचार करेंगे। हिंदू समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च माना गया है। वेदों में ब्राह्मण को आदि पुरुष का मुख कहा गया है, इससे ब्राह्मण का महत्व सूचित होता है। ब्राह्मण का यह स्थान उसके तप और त्यागमय जीवन तथा महान कर्तव्यों के कारण था। ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन, शिक्षा देना, दान लेना तथा यज्ञ आदि की धार्मिक क्रियाविधि का संपादन करना था। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क माना जाता था। मस्तिष्क का काम है सोचना तथा नवीन उद्भावनाएं करना। ब्राह्मण लोक कल्याण के लिए सोचा करता था, मनन करने के सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता था। सब कुछ समाज को देकर कुछ ना लेने की भावना से भरा रहकर निस्वार्थ समाज की सेवा करता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह समाज में सर्वोच्च स्थान का भागीदार था। यह कार्य कोई भी व्यक्ति करके समाज में महानता का स्थान प्राप्त कर सकता था। यद्यपि कुछ विद्वान प्राचीन हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण की महत्वपूर्ण स्थिति पर नाक भौं सिकोड़ते हुए कहते हैं कि स्मृतियों की रचना ब्राह्मणों ने की है अतः अपनी तारीफ किया है, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण का कर्तव्य करके ब्राह्मण बन सकता था। कर्तव्य की आधारशिला पर ही वर्णों का निर्णय होता था। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए महान विद्वान पांडुरंग गणपति वामन काड़े ने लिखा है कि स्मृतियां भले ही उनकी उपस्थिति उच्च स्थिति का विवरण प्रस्तुत करें, क्योंकि वे ऋषियों द्वारा विरचित हैं जो ब्राह्मण जाति के थे, पर बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो ब्राह्मण के विरोधी थे उनके साहित्य में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। दूसरे आरण्यकों में जो राजाओं की कृतियां हैं जिन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण करके जंगल में रहना आरंभ किया था, उन्होंने भी समाज में ब्राह्मणों की उच्च स्थिति का उल्लेख किया है। ऋग्वेदिक काल में भी ऋग्वेद ब्राह्मणों की उच्च स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है। इससे स्पष्ट है कि समाज में आरंभ से ही ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च व सम्मानित था। काड़े के विवरण में विद्वतापूर्ण तर्क का प्रतिपादन किया गया है। पक्षपात अथवा इच्छापूर्ण विश्लेषण से सच्चाई नहीं प्रकट की जा सकती। जन्मना जाति के सिद्धांतों को मानने वाला ब्राह्मण हो भी नहीं सकता। यहाँ हम प्राचीन भारत में ब्राह्मणों के कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख करेंगे। नंबर 1, अपस्तंभ गृहसूत्र में मनुस्मृति में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नंबर 2, ब्राह्मण सभी वर्णों के धर्मों व कर्तव्यों को बतलाता है, उसके परामर्श से किया गया शासन ठीक होता है। नंबर 3, ब्राह्मणों पर क्षत्रिय राज नहीं कर सकता क्योंकि वह क्षत्रियों से श्रेष्ठ था। नंबर 4, ब्राह्मण को कर से मुक्त रखा जाता था। नंबर 5, ब्राह्मण के भरण पोषण का प्रबंध राजकीय कोष से करना पड़ता था। नंबर 6, ब्राह्मण संतान विहीन होने पर यदि संपत्ति छोड़ मरता था तो उसे राजा नहीं ले सकता था, बल्कि उसके शिष्यों को दे दी जाती थी। नंबर 7, ब्राह्मण की हत्या करना जघन्य अपराध था, ब्राह्मण को दंड में छूट दी जाती थी। ब्राह्मण के बिना श्राद्ध कर्म नहीं हो सकता था, ब्राह्मण नाव का शुल्क नहीं देता था तथा बिना दाम दिए यजमान की वस्तु ले सकता था। उपरोक्त विशेषाधिकारों के अपेक्षाकृत ब्राह्मण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विशेषाधिकार का उपयोग करते थे। हिंदू समाज में शूद्रों का स्थान। भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैर से मानी गई है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। पैर से उत्पत्ति का सिद्धांत इस बात का सूचक है कि शूद्र का मुख्य कर्म, मुख्य धर्म समाज के सभी वर्णों की सेवा करना था। इस प्रकार वह सेवा करते हुए अपने धर्म का पालन करके दूसरे जन्म से स्वर्ण हो सकता था। मनुष्य अपने अशुभ कर्मों के कारण ही शुद्ध वर्ण में पैदा होता है। जहाँ प्राचीन साहित्य में एक ओर शूद्रों की निंदा की गई है, वहीं दूसरी तरफ शूद्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसे अन्य वर्णों का पोषक माना गया है। समाज रूपी शरीर का भार पैर रूपी शूद्रों के कंधों पर ही अवस्थित है। शूद्रों की अवस्था का अध्ययन निम्नान किस शिक्षकों में किया जा सकता है। नंबर एक, सामाजिक अवस्था। शूद्रों की सामाजिक अवस्था वैदिक काल में ठीक नहीं थी। यूं कह सकते हैं, बौद्ध तथा जैन काल को छोड़कर शूद्रों की दशा कभी ठीक नहीं थी। यद्यपि वे हिंदू समाज के महत्वपूर्ण अंग थे, फिर भी उनका स्थान सबसे नीचे था। ऐसा लगता है कि उस काल के शूद्र ज्ञानहीन, कर्महीन तथा पाशविक आचरण से युक्त थे, जिनका समाज के विकास में कोई बौद्धिक योगदान नहीं हो सकता था। अतः वे सेवा का कार्य करके समाज को स्वस्थ रखे उन्हें कुछ कार्य वर्जित कर दिए थे, जो इस प्रकार है। नंबर एक, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता था। नंबर दो, शूद्र यज्ञादि कार्यों में भाग नहीं ले सकता। नंबर तीन, शूद्र का संस्कार नहीं हो सकता। नंबर चार, ब्राह्मण शूद्र का दान नहीं ग्रहण कर सकता। ब्राह्मण शूद्र के घर केवल तभी भोजन कर सकता था जबकि शूद्र उसकी गाय चराता हो। शूद्र का धन ग्रहण वर्जित था। नंबर दो, शूद्र की धार्मिक अवस्था। शूद्र को सामाजिक अधिकार के साथ साथ धार्मिक अधिकार भी वर्जित थे। शूद्र यज्ञादि आदि नहीं कर सकते थे। उन्हें निम्नलिखित वर्जनाओं का पालन करना पड़ता था। नंबर एक, वेद मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। नंबर दो, यज्ञ नहीं कर सकते। नंबर तीन, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता। नंबर चार, वह शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सकता था। इसके विपरीत मोक्ष प्राप्त करने तथा अन्यान्य कर्म करने पर अधिकार शूद्र को प्राप्त हो जाता था। नंबर तीन, वैधानिक व्यवस्था। शूद्र का मूल्यांकन सबसे नीचे स्तर पर माना जाता था। यदि किसी ब्राह्मण की हत्या पर 1000 दंड स्वरूप देना होता था हत्या पर 1000 दंड द्रव्य दंड स्वरूप देना होता था। क्षत्रिय की हत्या पर 500 द्रव्य तथा वैश्य की हत्या पर 100 द्रव्य देना पड़ता था, तो शूद्र की हत्या पर केवल 10 द्रव्य देना होता था। इस प्रकार शूद्र के वैधानिक अधिकार बहुत कम थे। प्राचीन भारत में विधवाओं की सामाजिक स्थिति। प्राचीन भारत में पति एवं पत्नी का संबंध मात्र शारीरिक न मानकर आध्यात्मिक माना जाता था। विवाह जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन माना जाता था। इसलिए पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को वैधव्य का पालन जीवन भर करना पड़ता था। पत्नी के लिए पति देवता के समान पूज्य था तथा पत्नी को पति की अधिकार आज्ञाकारी होने की शपथ लेनी पड़ती थी। वैदिक काल में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार था। पति के रोगी अथवा नपुंसक होने पर पुरुष से बच्चा पैदा करने का भी अधिकार था, पर इसमें पति की आज्ञा लेना आवश्यक माना जाता था। वैदिक युग के बाद नारी के अधिकार सीमित कर दिए गए तथा उसे पति की मृत्यु के बाद विधवा रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसे पति के अत्याचार को बर्दाश्त करते हुए जीवन यापन करना पड़ता था तथा मध्यकालीन भारत में तो पति की चिता पर पत्नी को जीवित जल मरना पड़ता था। इस प्रकार की सती प्रथा जैसी आम मानवीय प्रथा भी हमारे समाज में वर्तमान थी। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण विधवा को निराश्रय तथा पशु तुल्य समझा जाता था। पर्दे की आड़ में उसके साथ व्यभिचार होता था तथा अंत में व्यभिचारी दुराचारी का आरोप लगाकर जल मरने के लिए बाध कर दिया जाता था। मनु आदि शास्त्रकारों ने विधवा को नियोग द्वारा संतानोत्पत्ति का अधिकार अवश्य दिया है, पर उसकी दशा में कोई सुधार नहीं दिखलाई पड़ता। हिंदू विधवा जैसी निराश्रित तथा तुच्छ कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः यह एक महाकलंक हिंदू समाज के सिर पर बना हुआ है। आधुनिक युग में राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि के प्रयासों से इस प्रथा में कमी अवश्य हुई है, पर आज भी हिंदू समाज में विधवा की दशा दयनीय है।